शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का, जो कि महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित किया गया है, हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आपके स्वागत में सजी आपसे महफिल है, आप सभी प्रभु का श्रृंगार कर रहे, आप सभी का दिल से कोटि कोटि स्वागत बारंबार, अभिनंदन बारंबार। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय सुदेश दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, आदरणीय शारदा दीदी जी, हमारी माननीय सांसद श्रीमती संजना जाटव जी, भ्राता आचार्य उपेंद्र जी जो मुंबई से पधारे हैं, बहन डॉक्टर दीप्ति रावत भारद्वाज जी, और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी जो राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। आप थोड़ा विलंब से हमारे मध्य उपस्थित होंगे, लेकिन आपका भी हम आह्वान कर रहे हैं। सभी माननीय विद्वत जन वक्ता से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शीला बहन मुंबई से, और हम कार्यक्रम का शुभारंभ 2 मिनट प्रभु स्मृति में मन को स्थित करके करेंगे।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हमारे सभी वक्तागणों का फूलों के गुलदस्ते और बैजेस से स्वागत करेंगे, और आप सभी करतल ध्वनि से सहयोग देते रहेंगे। वैसे भी तालियां बजाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आदरणीय सुदेश दीदी जी जो ज्ञान सरोवर परिसर के डायरेक्टर हैं, हाँ जी तालियों का सहयोग देते रहिए। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आचार्य उपेंद्र जी, answered by Sanjana Jatav ji. Adani Sharda Didi, lagta hai thak gaye taali baja ke aap. श्रीमती दीप्ति भारद्वाज जी, शीला बहन मुंबई, और जैसा कि विषय लिया गया है महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण, जो वर्तमान संदर्भ में बहुत उपयोगी विषय है। भारत की आजादी के बाद से ही महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए गए, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज महिलाओं को जब अवसर मिले हैं तो वो धरा पर ही नहीं लेकिन नभ में भी अपना परचम फहरा रहे हैं। लेकिन वर्तमान देश और समाज की स्थितियों को देखते हुए केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ आध्यात्मिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया है और जीवन मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ है, तो हम देखते हैं कि सादगी, सरलता, पवित्रता, त्याग, सहिष्णुता, आत्मसंयम जैसे बहुमूल्य गुणों का नारी में आज अभाव देखने में आता है। इस कारण जो साधन सुविधाएं बढ़ी हैं उसके बावजूद भी जीवन में समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जो तनाव, चिंता, भय, असुरक्षा को जन्म दे रही हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ भक्ति, पूजा पाठ, कर्म कांड करना ही नहीं है, लेकिन सही अर्थों में ये जीवन के सत्यों की समझ देती है। आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना, प्रभु के साथ एकाकार होते हुए उनके गुणों को स्वयं में समाहित करना, जिससे आत्मा में अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास होने लगता है, उसमें आत्मबल, मनोबल बढ़ता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी हम बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। तो आवश्यकता है आधुनिकता में आध्यात्मिकता के समन्वय की, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ, दिव्य और सुखमय हो पाएगा। तो आज इस विषय पर विस्तार से हम सभी अपने माननीय वक्ताओं के विचार सुनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व आपके स्वागत के लिए हमारे मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई, नवीन भाई और बितेंद्र भाई गीत लेकर के आ रहे हैं, जो यहाँ ही वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सतीश भाई गीतकार भी हैं, सभी गीतों की रचना आपके द्वारा की जाती है और साथ में आप गायक भी हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे ये कलाकार भाई आपके लिए बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत लेकर आए हैं।
ओम शांति, बड़ी कमजोर आवाज आई, ओम शांति। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, उससे शिव शक्ति का निर्माण होता है। महिला सशक्तिकरण से ही होगा समाज का परिवर्तन, और आध्यात्मिक सशक्तिकरण से होगा महिलाओं का सशक्तिकरण। वंदे मातरम, वंदे मातरम, गुंजित धरती और गगन, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सादर स्वागत अभिनंदन, आपका सादर स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार करें।
महिला सशक्तिकरण से ही महिला सशक्तिकरण से ही होगा समाज का परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति से होगा महिलाओं का सशक्तिकरण वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गूंजित धरती और गगन ज्ञान सरोवर बना मनोहर स्वागत स्वागत अभिनंदन ज्ञान सरोवर बना मनोहर सादर स्वागत अभिनंदन तू संतति की संरक्षक है तू संस्कृति की संरक्षक तू संतति की संरक्षक है तू संस्कृति की संरक्षक मानवता की है रक्षक तू जीवन जग की है रक्षक सुखमय समाज की रचता तू सुखमय समाज की रचता तू महिला नवयुग का दर्पण ज्ञान सरोवर बना मनोहर सादर स्वागत अभिनंदन ज्ञान सरोवर बना मनोहर सादर स्वागत अभिनंदन
वाह वाह बहुत खुशी के पल हैं एक इतिहास बनने जा रहा है
La 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 सौ सौ निराशाएं रहे विश्वास यह दृढ़ मूल है सौ सौ निराशाएं रहे विश्वास यह दृढ़ मूल है इस आत्मलीला भूमि को वह भी भूल न सकता भूल है अवसर यही वो आया है बाबा अवसर यही वो आया है होना जग सेवा में अर्पण ज्ञान सरोवर बना मनोहर सादर स्वागत अभिनंदन ज्ञान सरोवर बना मनोहर सादर स्वागत अभिनंदन नारी सशक्त बना रही शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारिया नारी सशक्त बना रही शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारिया राजयोग और मूल्यों से महका रही जग प्यारिया, महिला सशक्तिकरण का है। बाबा महिला सशक्तिकरण का है, इससे उत्तम क्या उदाहरण। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सादर स्वागत अभिनंदन। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सादर स्वागत अभिनंदन। वंदे मातरम वंदे मातरम, गूंजित धरती और गगन। वंदे मातरम वंदे मातरम, गूंजित धरती और गगन। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सागर स्वागत अभिनंदन। ज्ञान सरोवर बना मनोहर, सागर स्वागत अभिनंदन।
बहुत बहुत थैंक्स हमारे मधुरवाणी ग्रुप के भाइयों को, इतना सुंदर गीत हम सबके लिए प्रस्तुत किया। और अभी मैं कुमारी साक्षी और उनके ग्रुप को आमंत्रित कर रही हूँ स्वागत नृत्य के लिए। नारी जब शक्ति बन जाती है तो फिर वो स्वयं का ही कल्याण नहीं करती, लेकिन वो जगत कल्याण के निमित्त बन जाती है, शिव शक्ति बन जाती है। तो इन्हीं भावों को लेकर के जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, ये गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं मुंबई से पधारी हुई ये चार कुमारियां। बहुत बहुत सुंदर कुमारी साक्षी एवं उनके साथी, एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से हम बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। और अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी को कि आप सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालेंगे। शारदा दीदी इस महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका हैं। आप वर्तमान में अहमदाबाद, अंबावाड़ी और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की संचालिका हैं और मुख्यालय आबू में भी जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, विशेषकर जो नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए उनकी आप प्रशिक्षिका भी हैं। आपने जयपुर से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को प्राप्त किया। लगभग 55 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ में विदेशों में कुछ वर्षों तक आप रहे और फिर 7 वर्षों तक आपने दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी। आपके लिए मैं कहूंगी, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसे आपके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आदरणीय शारदा जी,
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के रक्षक, सर्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव और उसकी आप सर्व स्नेही संतान आत्माएं, भाइयों एवं बहनों, सम्माननीय मंच जिसमें हमारी आज के चेयरपर्सन आदरणीय चक्रधारी दीदी हमें ब्लेसिंग्स से श्रृंगारित करेंगी, आदरणीय सुदेश दीदी और सम्माननीय मंच, हम सब यहाँ पर त्रिदिवसीय न्यारी सशक्तिकरण, लेकिन कौन सा सशक्तिकरण? वैसे तो बहुत सशक्त है, शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, है ही नारी शक्ति। परंतु वो शक्ति आज किस दिशा की तरफ जा रही है वो एक सोचने का विषय है। उसके लिए गीत के एक शब्द याद आते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। नारी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो चाहे तो निर्माण कर सकती है और चाहे तो पतन की ओर भी ले जा सकती है। आज इस विश्व को दृष्टिगोचर करें तो दोनों ही तरफ दिखाई देती है, परंतु आवश्यकता किस बात की है? हमको चाहिए क्या? आज हर एक से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, कोई कहेगा शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड बातें ही सुनने को मिलेंगी, परंतु एक नया सुदृढ़ सुखमय समाज चाहिए। नारी जो सबला थी
आज उसे अबला कहा जाता है, सबला है, उनको फिंगरप्रिंट्स पर गिनती कर सकते हैं। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, तीन देवियां जो ज्ञान, शक्ति और धन की देवी हैं, जिसके प्रति मस्तक नतमस्तक हो जाता है। जब लड़की शादी करके घर आती है तो कहा जाता है लक्ष्मी आई है, और कुछ समय के बाद वो लक्ष्मी का स्वरूप क्या हो जाता है, उससे किस प्रकार का व्यवहार होता है, आप सभी अनुभवी हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं नारी के अंदर वो कला है, वो जिस प्रकार से बच्चों को बनाना चाहे, उनका चित्र समाज में जैसा रखना चाहे वो रख सकती है, लेकिन आवश्यकता है चिंतन की धारा को बदलने की। आप सब ने आज प्रातः राजयोग शिविर का पहला सेशन सुना, और सुनने के साथ ही समझती हूं विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। जो पहले स्वयं को बाह्य दृष्टि से ये शरीर समझते थे, समझ मिली मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आत्मा जब गर्भ में है तो आत्मा ही है, लेकिन जब वो जन्म लेता है, मां बाप उसको सिखाते हैं तुम लड़का है तुम लड़की है, वहां ही अंतर शुरू हो जाता है, दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। और हम सब कहते क्या है, हम सब उस एक परमात्मा के संतान, भाई भाई है, ब्रदरहुड है। जब ब्रदरहुड है तो लड़का और लड़की कहां से आए, और ये अंतर हमारे दृष्टिकोण को, व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। हमको आज आत्मा का लेसन मिला, जिसने मेरी सोचने की विचार को परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन को अगर मैं कहूं हमारे विचार सत्य हो, सुंदर हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, जो किसी के भी जीवन को एक सही दिशा, एक सही प्रेरणा और सन्मार्ग पर चला सके। बच्चे को मां बोलना सिखाती है, संबंधियों का परिचय देती है, लेकिन उसके बोल किस प्रकार के होने चाहिए। गीत में हम सुन रहे थे संस्कृति की रक्षक है, संस्कारों की रक्षक है, सभ्यता की रक्षक है। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता कहां जा रही है, और उसको देखते हुए स्वयं स्वयं के अंदर निराशा जागृत होती है। तो जीवन वास्तव में एक ऐसा कला भवन है जिसकी दीवारों पर लटके हुए अनुभव उसके चित्र को प्रदर्शित करते हैं। पहले नानी और दादी बच्चों को कुछ वीरता की, महापुरुषों की, कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाती थी। आज जन्मते ही बच्चे के हाथ में क्या है? मोबाइल। वो उसे क्या सीखता है, क्या समझता है? मम्मी को बहुत काम है, बिजी है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, उससे खेलता रहेगा और मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगी। उसमें संस्कार कौन डालेगा? या मेड सर्वेंट है, उसको दे देंगे, उसमें संस्कार कौन डालेगा? जो मेड सर्वेंट के संस्कार है वही उसके अंदर जाएंगे, जैसा वो बोलेगी वैसा ही वो बोलेगा। तो वाणी में एक मधुरता, एक मिठास हो, एक रेस्पेक्ट हो, एक सम्मान की भावना हो, वो हमको चाहिए। अगर हम थोड़ा से इतिहास के पीछे चले जाएं, हमारे ही इस भारत देश में गार्गी, मैत्रेयी, कौशली आदि विदुषी नारियां हुई हैं। इतिहास को देखें तो भी महान नारियां राजनीति के क्षेत्र में हुई है, बहादुरी के क्षेत्र में देखें तो भी बहादुर नारियां लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई आदि हुई हैं। नाम लूंगी तो सबकी लंबी लिस्ट है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को कहा, तुम्हारे इस भौतिक वैभव को लेकर मैं क्या करूंगी जो मुझे जीवन के अमृतत्व को प्राप्त ना कराए। उसका त्याग किया और आज हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वैभव, समृद्धि और संपन्नता है। यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने अंदर की जो सुषुप्त शक्तियां हैं, खो गई है नहीं कहूंगी, लेकिन मर्ज हो गई है। क्यों? बाह्य मुखता में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो देखते हैं वही हम करते हैं, पर जीवन की वास्तविकता, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड का आपस का कन्वर्सेशन है। अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड पावरफुल है, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और अगर इंटरनल वर्ल्ड पावरफुल है तो आत्मिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, जो आज हमें पहला आत्मा का लेसन मिला और आत्मा के अंदर के गुण क्या है? ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति और पवित्रता, जो जीवन का निर्माण करने के लिए है। तो बेटर है हम अपनी उस एंशियंट विजडम की ओर जाएं और अलाउ करें अपने माइंड को गुड थॉट्स के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए, पावरफुल थॉट्स के लिए, श्रेष्ठ विचारों के लिए। वो करना मुझे होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। मुझे क्या करना है? अपने सामने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपनी मंजिल देखनी है, मुझे कहाँ जाना है। तो नारी का वास्तव में जो सच्चा सौंदर्य है, उसका गुणों से है, कलाओं से है, उसकी विशेषताओं से है, उसकी मॉरलिटी से है, उसके एथिक्स से है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन का नीति शास्त्र क्या है, किन नीतियों पर, किस अनुशासन पर हमें चलना है वो सिखाया जाता है, किस प्रकार से हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ और महान बनाएं वो सिखाया जाता है, कैसे हम एडजस्ट करें, अपने को मोल्ड करें, कैसे भाईचारे की भावना, एक हार्मनी की भावना हमारे अंदर हो, वो सिखाया जाता है। लेकिन आज परिवार जो पहले यूनाइटेड थे आज डिवाइडेड हो गए हैं, माइक्रो फैमिलीज हो गई है, जिसका नुकसान कितना हो रहा है वो हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये राजयोग की शिक्षा जहां आप और हम सभी बैठे हैं हमें महसूस कराता है, महाभारत का दुर्योधन कहता है जानता हूं अधर्म क्या है, नहीं छोड़ सकता हूं, जानता हूं धर्म क्या है, धारण नहीं कर सकता हूं, कौन सी विवशता है। कहते हैं समाज में आज रहना है सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्या मुझे कोई जबरदस्ती बियर पिला सकता है, नाइट्स क्लब में ले जा सकता है, है किसी की हिम्मत? फिर ये क्यों कहा जाता है हमें समाज में रहना है इसलिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। विचारों पर हम अटेंशन दें, हम सोचें मुझे क्या करना है। समाज ऐसा नहीं है, समाज को बनाने वाले हम हैं, मैं हूं। मैन इज अ सोशल एनिमल ऑफ द सोसाइटी। मैं जैसा बनाना चाहूंगी बना सकती हूं। सो इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। नो अमाउंट ऑफ डार्कनेस कैन ब्लो योर कैंडल। लेकिन मेरी सोच, मेरे विचार क्या है, मुझे करना क्या है, आवश्यकता है इस मन को कंट्रोल करने की, इस पर रूल करने की, क्योंकि ये बेलगाम हो गया है, उलझने हैं, चैलेंजेस हैं, परंतु मुश्किल नहीं है। समस्या का समाधान करना है उसकी चाबी है, जो तालों को खोल सकती है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको खत्म किया जा सकता है, और वो चाबी है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आप कल से यहां के वातावरण, वाइब्रेशंस सबको देख रहे हैं और देखते देखते सोच भी रहे हैं कि ये सब यहां कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये वो ईश्वरीय शक्ति है जो हमें अपलिफ्ट कर रही है, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस एंड चैलेंजेस, बट एटलीस्ट आई कैन चेंज माई ओन एटीट्यूड टू वर्ड द सिचुएशन एंड चैलेंजेस। और उसके लिए मुझे चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होने की आवश्यकता है, जो यहां पर हम सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज अ मेगा सीरियल, बहुत चॉइसेस हैं, जिसको जो सेलेक्ट करनी हो वो कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन मी। कोई भी जबरदस्ती, कोई भी बात इम्पोज नहीं कर सकता है, इसलिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, और सोच को बदलने के लिए स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कल भी मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में 3 आईज हैं, 2 आईज तो हम सबको हैं, इनसे तो हम देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वही करते हैं। मेरी अंतरात्मा 3rd eye of wisdom मुझे कहती है नहीं करो। आप महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे, कुछ भी करना है आप सोचते हैं, कहते हैं मेरा एक मन कहता है कर लूं, एक मन कहता है नहीं। हम दो नहीं है, मन तो एक ही है, लेकिन जो हमारा विवेक और बुद्धि है वो मुझे कहता है नहीं। लेकिन मन की चंचलता उस विवेक और बुद्धि को ओवरटेक कर लेती है और उसी आधार पर चलती है। इससे तो हमारे शरीर की दो टांगे दो पांव बहुत अच्छे हैं, दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? जब हम चलते हैं एक आगे जाता है दूसरा पीछे रहता है, फिर पीछे वाला आगे जाता है आगे वाला पीछे आ जाता है। तो दो पांव में गजब की दोस्ती है, एक आगे जाता है एक पीछे रहता है। ऐसी दोस्ती अगर इंसान सीख ले तो उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, उत्तम बन जाए। जो यहाँ राजयोग हमको सिखलाता है तो आत्मा की समझ और आत्मा की पहचान दी, जिस आत्मा को हम इंग्लिश में सोल कहते हैं, चार अल्फाबेट्स है, वो चार अल्फाबेट्स मुझे बहुत कुछ सिखा देते हैं। सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट, क्योंकि आत्मा एक लाइट है। लव दाई सेल्फ, लव ईच अदर, बट स्पिरिचुअल लव, नॉट द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये राजयोग, ये ईश्वरीय नॉलेज, ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमको जो सिखलाती है, वो सिखा रही है, वो अंडरस्टैंडिंग दे रही है हमें 10 बातों की। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, दूसरा स्वयं को रियलाइज करने की क्षमता, तीसरा चैलेंजेस को स्वीकार करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। व्यक्ति को आज मानसिक चिंताएं हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जब सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं तो कैसे माइंड को पीसफुल और उसको बैलेंस करके चले वो सिखाती है। पांचवा, मन की शांति किस प्रकार से रखें, जब आत्मा का स्वधर्म ही शांति है तो मैं अशांत और डिस्टर्ब किसी के भी स्ट्रेस में कोई भी सिचुएशन में नहीं आ सकती हूं। छह, विचारों को कंट्रोल करना, उन विचारों को रूल करना, कि कैसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आंतरिक जागृति हमको देती है। सातवां, विचारों को पॉजिटिव रखना, साधारण भी नहीं हो, नेगेटिव भी नहीं हो। आठवां, कॉन्सेंट्रेशन पावर। नौ, परिवर्तन करने की शक्ति। दस, सेल्फ अवेयरनेस हमको देता है और वो सेल्फ अवेयरनेस हमें बहुत कुछ सिखा देता है, कंट्रोल करा देता है, मंजिल हमारे सामने रखता है। तो मन की मनोदशा को बदलना है, और जब मन की मनोदशा को हम बदलते हैं तो हम कह सकते हैं क्षमा बुझकर जल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादा कभी भी बदल सकता है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसलिए जो आज तक खुदा से जुदा रूहों को, खुदा से जुदा रूहों को कब्र जिस्म आजाद करो, निकालो जनाजा जिस्म का और रूहे चमन आजाद करो, तो उसमें सुख शांति संपन्नता और समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी और हम अपने को एम्पावर होता महसूस करेंगे। तो जो सुप्रीम पावर है उससे आत्मा अपने को कनेक्ट करके शक्तियां स्वयं में धारण करती है, अपनी कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को, विकारों को, अनवांटेड हैबिट्स को समाप्त करती है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अवश्य इन बातों को जो यहाँ पर सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसे अपने साथ ले जाएंगे और साथ साथ अपना जो भी सर्कल है उनों को भी उससे लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शारदा दीदी जी का। आपने आध्यात्म का हमारे जीवन में महत्व इसको विस्तार से समझाया। आध्यात्म हमारे मन पर ही सीधा असर करता है, हमारा मन परिवर्तन होने लगता है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तब मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, आत्म संयम हम रख पाते हैं, आत्मनियंत्रण हमारा बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर कहेंगे मन हमारा स्वस्थ होता है जब हम आध्यात्म का अभ्यास करते हैं। और ये हमें संस्कारों की ओर ले जाता है, यानी हम स्वयं संस्कारवान और चरित्रवान बनते हैं। और जब हमारे संस्कार अच्छे हैं तो भावी पीढ़ी पर भी इसका असर होता है। जैसे आपने बताया कि कैसे महिला ही संस्कृति की संरक्षक है और पहले कैसे बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, तो हम जैसे अपना आचरण करते हैं वही बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं। हम घर में जैसा माहौल देते हैं, अगर आप घर में लड़ाई झगड़े का माहौल देते हैं तो बच्चा भी वही सीख जाता है। अगर हम आलोचना का माहौल देते हैं, हम किसी के निंदा ग्लानी की बातें करते हैं तो बच्चा भी वही सीख जाता है। अगर हम प्रशंसा का माहौल देते हैं तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। तो हम जो कर रहे हैं वही हम उनको सिखा रहे हैं। तो आवश्यकता है पहले हमारे स्वयं के परिवर्तन की, कि हम अपनी कमजोरियों पर विजय पाएं, तो हम बच्चों को वह संस्कार दे सकेंगे। अभी हम अपनी अगली वक्ता श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। आप विशेष दिल्ली से हमारे मध्य आज ही पधारी हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय सचिव भाजपा महिला मोर्चा हैं। पूर्व में आप उपाध्यक्षा उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उत्तराखंड सरकार में रही, जिसमें आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। ऊर्जा फाउंडेशन की आप संस्थापक हैं, महिला सशक्तिकरण व बाल सुरक्षा और पर्यावरण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था चलाती हैं। आप IBN 7 राष्ट्रीय समाचार चैनल में संवाददाता और न्यूज एंकर रही हैं। 25 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड के बीरोंखाल विधानसभा से 2007 में आपने चुनाव लड़ा, ICAPP में भाजपा का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न कार्यों के उत्तरदायित्व को आप संभाल रही हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, आसमान कोई सीमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आज कदम छोटा सही, कल बड़ी छलांग है। सितारों पर निशाना साधना है, पहले अंतरिक्ष और चांद है। हम कभी कम नहीं, क्षमता असीम और विराट है।
ओम शांति। मैं कहूंगी भारत माता की, सब थोड़ा जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ माउंट आबू में उपस्थित हैं। यहाँ हम पहली बार, मेरा इस पूरे कार्यक्रम में वैसे बहुत बार मिलना हुआ है अटल जी के जरिए, कई बार दिल्ली में मिलना और सभी लोगों से मिलना रहा, लेकिन इस तरीके से पूरा आपका सेंटर देखना और बहुत अच्छे विषय पे, जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं उसको साक्षात फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रह के देखना, वो आज हुआ। उसके लिए मैं सारे पूरी आपकी संस्था को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर इस विमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के जो ये सेशन है इसमें उपस्थित हमारी चेयरपर्सन जो है राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी राजयोगिनी सुदेश दीदी उपस्थित हैं, हमारी अभी हमने सुना शारदा दीदी जी को वो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, हमारे आचार्य उपेंद्र जी भी मुंबई से आए हैं, संजना जाटव जी हमारी सांसद महोदय यहाँ की वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और हमारी अभी जो संचालन कर रही हैं सविता दीदी जी वो आपके समक्ष अभी वक्तव्य रखी रही थी, और आए सभी मैं कहूँगी उपस्थित भाइयों बहनों सभी को नमस्कार। इस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में जब हम बात करते हैं या जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं और महिलाओं के बीच में बहुत काम करते हैं, तो हम देश भर में हर जगह हमें हर देश के हर कोने कोने में महिलाओं के बीच में जाकर काम करने का मौका मिलता है, और चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, मेट्रो सिटीज हो, या फिर उदयपुर के आसपास के जो ट्राइबल इलाके हैं या उड़ीसा का ट्राइबल एरिया है या बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, सभी जगह हमारा प्रवास रहता है, हमको जाना रहता है। लेकिन कुछ चीजें जो इन कुछ सालों में बदली हैं मैं केवल आपको थोड़ा वो बताऊंगी और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो यहाँ रहा उसके बारे में बताऊंगी, कि बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी लगी जो ब्रह्म कुमारीज और भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉमनली एक साथ करती है, जैसे हम जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और जैसे G20 समिट जब भारत में हुआ 2023 में, तो उसका भी जो थीम था वो वसुधैव कुटुंबकम था, वो यही था कि कैसे वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के लिए हमको काम करना है, उसका थीम भी वही था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी इसका भी एक जो थीम है वो यही है लगभग, कि कैसे हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। तो इस थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हम लोग केवल पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसकी एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी है हमारी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म यानी एकात्म मानववाद, और इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को आप कैसे बेटर व्यक्ति बनाएंगे, कैसे उसे बेटर बनाएंगे, जब आप समाज में बेहतर लोगों का को इकट्ठा करेंगे तो पूरा समाज ही बेहतर बनेगा। मुझे लगता है यही आप भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भी यही है कि कैसे हर एक व्यक्ति, हर एक यहाँ पर हमारी बहन, कैसे हमारे हर एक भाई एक बेहतर व्यक्ति बने, उनका व्यक्तित्व बेहतर बने, ताकि पूरा समाज एक बेहतर समाज बन पाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी कॉमन चीजें हम लोगों में हैं, तो आप सबको इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं आज ही इसको देख पा रही हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ऐसे काम करते हैं, और अभी जो कहा एक्चुअली शारदा दीदी ने वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें थी, उन्होंने दो चीजें मैंने जरूर नोट करी, उन्होंने कहा कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं बहुत पीयर प्रेशर में रहते हैं कि समाज में अगर हम हैं तो ये करना ही पड़ेगा, और हमारे बच्चे हैं तो उनको भी बहुत सारी चीजें पीयर प्रेशर रहता है कि बर्थडे पार्टीज हैं तो वो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि सब कर रहे हैं, कुछ और भी चीजें कहीं जाना है नहीं जाना चाहते लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि सब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो बेटर मदर हम अगर कैसे बन सकते हैं, माँ बनने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता है, मुझे लगता है उसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे हम बहुत सारी हम कल्पना चावला को सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी सुनीता विलियम्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को सेलिब्रेट करते हैं, हम आज मिशन हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन था उसमें जो दो हमारी बहनें थी सोफिया कुरेशी और हमारी विन कमांडर व्योमिका, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं कि वो कैसे उन्होंने सब चीजें हमारे सामने रखी और उसको प्रेजेंट किया, ऐसे और भी बहुत सारी महिला हस्तियां हैं, लेकिन साथ साथ जैसे हम जीजाबाई को सेलिब्रेट करते हैं कि वो शिवाजी को उन्होंने कैसी शिक्षा दी, कैसे हम अहिल्याबाई होलकर जी को सेलिब्रेट करते हैं कि उनको माँ का दर्जा पूरे साम्राज्य ने दिया, पूरे इंदौर ने उनको दिया, पूरे उस पेशवा ने उनको दिया, तो ये सारी बातें भी ये उस वक्त की हैं लेकिन आज भी हमें जो हमारी जो माँ है जो जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आज की जेनरेशन को एक अच्छी बेटर जेनरेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए भी अवार्ड होना चाहिए। मुझे लगता है आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी लोगों को लगेगा और माँ को लगेगा कि हाँ मुझे बेस्ट मदर बनना है और मैं कैसे बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि हम बेस्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। कई बार हम बेस्ट करने के चक्कर में हम परफेक्ट होना चाहते हैं, तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक है परफेक्ट होना, एक है बेस्ट होना। तो बेस्ट तो मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं अपना बेस्ट करती हूँ और उसमें मैं खुश रहती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ तो परफेक्ट तो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। इस पूरे विश्व में कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है। तो अगर हम परफेक्ट होने के पीछे निकलेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हम जैसे हैं हम वैसे रहें और अपना बेस्ट जरूर हम करें और हमें समाज को दें, अपने परिवार को दें, और जहां भी हम बेस्ट कर सकते हैं उसको करें। तो मैं तो सिर्फ आप सब लोगों से यही कहूंगी और यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आती हैं। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज जब हम सरकार में होते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो आज एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हमारे सामने हैं जो केवल विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते हैं, वो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाली कैसी डेवलपमेंट हो सकती है, कैसी सरकार हो सकती है, कैसे विकास हो सकता है जिसमें कि महिला आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हो। ऐसी एक सरकार, ऐसी एक डेवलपमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम प्रवास बहुत सारी जगह करते हैं, तो अब मैं काफी गांव में जैसे जाना हुआ तो मैंने पूछा कि आप सब लोगों के पास, कितने लोगों के पास कुछ साल पहले बैंक के खाते थे, तो एक भी बहन ने या भाई ने हाथ नहीं उठाया, किसी के पास बैंक का खाता नहीं था। लेकिन मैंने पूछा कि आज कितने लोगों के पास यहाँ पे बैंक के खाते हैं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने हाथ नीचे रखा हो। 100% लोगों के पास आज बैंक में अकाउंट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले एक गरीब व्यक्ति को पता ही नहीं था कि बैंक कैसे जाते हैं, सेविंग क्या होती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, और मुझे तो उन्होंने खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस भी बताया और कहा कि मैडम बैंक खाता खोलने की बात तो दूर है, हमें तो बैंक का जो गार्ड है वो भी हमको बोल देता था कि यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। तो हम तो गेट पे भी हमारी एंट्री नहीं थी, लेकिन आज उन लोगों के पास खाते भी हैं। आज हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने बिजनेस करती हैं, स्वयं के काम करती हैं, छोटे छोटे समूह चलाती हैं, और आज वो छोटे समूह बहुत बड़े हो चुके हैं। 5 लोगों और 10 महिलाओं से शुरू किए गए समूह आज 200 और 250 महिलाओं के समूह में तब्दील हो गए हैं। उनको कोऑपरेटिव में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े कोऑपरेटिव आज चल रहे हैं। तो आज एक विमेन कैसे आगे लीडरशिप कर सकती है, कैसे वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो सकती है, उसकी कोशिश सरकार ने करी है। समाज में कैसे वो एम्पावर होगी उसकी कोशिश करी है कि उसके घर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हर घर में उसके पास लकड़ी नहीं, उसके पास गैस होना चाहिए जलाने के लिए, उसको शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको घर पे ही उसके पास शौचालय मिले, ऐसी व्यवस्था सामाजिक तौर पर भी उसको एम्पावर करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक तीसरी एम्पावरमेंट है जिसके बारे में आज यहाँ बात हो रही है, वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, जो बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और वो मुझे लगता है कि आप जब ऐसी एक दिव्य स्थान पर आते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मिलता है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो आपको मिलती रहती हैं, लेकिन ये आपका एक इनर पीस है, एक इनर सेल्फ है, उसको कैसे आप मजबूत करें, कैसे आप स्ट्रांग करें। मुझे लगता है जब आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं और आते हैं तो आपको वो मिलता है। और मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं जरूर कोई आपका एक फॉर्मल सेशन जरूर करना चाहूंगी। इतना ही आप लोगों से कहूंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय श्रीमती दीप्ति बहन जी का। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने अनुभव रखे हमारे सामने, और साथ साथ आज वर्तमान सरकार कैसे महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। आपने एक बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया कि हम जो भी ना ऐसे एज ए गृहिणी जो भी कार्य करते हैं घर में, उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है, उसे भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो ऐसे सबसे अधिक कम महत्व का जो कार्य समझा जाता है वो एक गृहिणी का ही समझा जाता है। तो एक बार ऐसे ही मुझे आपकी बात सुनते हुए याद आ रहा था कि एक महिला को घर में उनके घर वाले रोज यही कहते थे, तुम दिन भर घर में रहती हो, करती क्या हो। माना उनकी अपेक्षा रहती थी कि जब हम बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं, तो वो फिर भी उनकी सब सेवा करे, जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करे, और वो अपने आप को थका हुआ महसूस करती थी। तो जब बार बार सुनकर वो थक गई कि सारा दिन काम करने के बावजूद भी यही सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो, सारा दिन घर में रहती हो, तो उसने एक दिन सचमुच कुछ किया ही नहीं, ना खाना बनाया, ना कपड़े संभाले, ना बर्तन साफ किए, ना सफाई की, ना बच्चों का ही कोई काम किया, सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहा और वो आराम से बैठकर टीवी देखती रही। और शाम को जब घर में सब वापस आए तो देखा घर का क्या हाल है, तो पूछा भाई क्या बात है, ये सब क्या हुआ है घर में। तो बोला रोज मैं सुनती रहती हूँ तुम करती क्या हो, तो मैंने सोचा आज सचमुच मुझे कुछ नहीं करना है। तो उनको समझ में आ गया कि उनका महत्व क्या है, क्योंकि अगर घर में हम किसी को काम पर भी रखते हैं, मेड रखते हैं, कुक रखते हैं, या जो भी और काम कराने होते हैं, ड्राइवर रखते हैं, उसको भी पे करना पड़ता है, और वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भावना से घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य में जुटी रहती है और उसको हम कुछ भी महत्व नहीं देते हैं, तो उनका भी अपना ही स्थान है और उसे हमें और उसे सचमुच रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो अभी हमारे अगले वक्ता हैं माननीय आचार्य उपेंद्र जी, आप मुंबई से पधारे हैं। आपका बायोडाटा तो वैसे बहुत लंबा है, एक पुस्तक की तरह है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं सुनाना चाहूंगी। आप आध्यात्मिक सद्गुरु हैं और अंतर योग फाउंडेशन मुंबई के आप संस्थापक हैं। आप एक जीवन मुक्त आध्यात्मिक सद्गुरु, क्रांतिकारी महानायक और ज्ञान के महासागर हैं, जो सन 2005 से अपनी मातृभूमि की निस्वार्थ और निरंतर सेवा कर रहे हैं। आचार्य जी सिर्फ शास्त्र सिखाते ही नहीं, बल्कि शास्त्र अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। आचार्य जी को अभियांत्रिकी की दो उपाधियों के साथ ही अन्य अभियांत्रिकी शाखाओं एवं वित्त क्षेत्र में भी प्रमाण पत्र प्राप्त हैं। भारत को एक आरोग्य संपन्न, समृद्ध और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाना और उसे विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करना आपका परम उद्देश्य है। आप आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेदिक शास्त्र के साथ साथ आध्यात्मिक उपचार पद्धति में भी कुशल हैं। असाध्य रोगों से, व्याधियों से पीड़ित हजारों श्रद्धालुओं की पीड़ा एवं रोग निवारण करने से उन्हें लोग मास्टर हीलर भी कहते हैं। आप अभी हमें सुना रहे थे कि कैसे कोई ऐसे असाध्य रोगी उनके पास आते हैं और वो उनके लिए जो भी उपाय करते हैं, दो ढाई घंटे में अगर पहले टेस्ट कराएंगे और बाद में दो ढाई घंटे बाद टेस्ट कराएंगे तो उसमें ही उनको फर्क आ जाता है, इतना उनकी हीलिंग पावर है। आचार्य जी एक दूरदर्शी विचारक, श्री विद्या अर्थशास्त्र तथा आधुनिक निवेश के उच्च कोटि के ज्ञाता तथा पारंगत ज्योतिषी हैं। आपने त्वरित फलश्रुति देने वाली अनेक दुर्लभ और शक्तिशाली साधनाओं की रचना की है। आप नारी शक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने हेतु वेदांत के सत्र आयोजित करते हैं तथा महिलाओं में आंतरिक शांति बढ़ाकर उन्हें तनावमुक्त बनाने के उद्देश्य से नियमित रूप से विभिन्न शहरों में ध्यान सत्र आयोजित करते हैं। आपने भारत भ्रमण करके सभी गुरु, नेता, बिजनेसमैन को मिलकर भारत को विश्व गुरु कैसे करें, इसके लिए प्रयास जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव शीर्ष ग्रंथ उन्होंने लिखा है, दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र साधना की भी आपने रचना की है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं कहूंगी माया के चारों ओर फैले अंधकार में आपका सेवाधारी जीवन एक जलता दिया है। संकट की इस घड़ी में आपने अर्जुन की तरह उद्घोष किया है, न दैन्यम न पलायनम, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर आप सदा कृत संकल्प होकर बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य जी को कि अपने महान विचार हम सबके समक्ष रखें।
नमस्कार, ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को, सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। ये माउंट आबू में मेरा प्रथम बार आना हुआ है, तो जो शीला दीदी जी है, खास करके जो मुंबई से है, तो उन्होंने हमें आमंत्रित यहाँ किया था महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए। तो अभी ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मुझे बोला गया था कि आपको एक 15 मिनट तक बात करनी है, तो मुझे टेंशन आ गया कि 15 मिनट बोलूं क्या, क्योंकि मेरी ख्याति है कि कम से कम 10 से 15 घंटा एट ए स्ट्रेच बोला जाता है कोई भी शिविर हो, एंड वो शिविर में सबसे अधिक महिला ही आती है 70%, वो रुकती भी है बोलती भी है, और वो भाषण वो जो होता है जब चलता है सेशन, तो उसमें ना भजन होता है ना बाकी से, प्योर ज्ञान होता है एंड जिससे तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसमें से कुछ झलकिया आज फटाफट बताता हूँ, समय ना गवाते क्योंकि काफी पॉइंट है सब। तो सर्वप्रथम हम ये जो सोच रहे कि भारत विश्वगुरु हो जाए, तो सब जगह चल रहा है भारत विश्वगुरु हो जाए, तो बहुत सारे नेताओं को भी मिला, बहुत सारे इस देश के गुरुओं को मिला। तो मेरी एक ही मान्यता है कि आज भारत विश्वगुरु होने के लिए सब ज्ञान सब शक्तियां हमारे पास है, एक चीज मिसिंग है कि अभी तक भारत अर्धन आरिश्वरीय स्थिति में नहीं आया है, अभी भी पुरुष प्रधान समाज यही है। मैं कई गुरुओं के पास जाकर आ गया हूं, बड़े से बड़े, नाम किसी का नहीं लेता हूं, लेकिन वो उनकी एक मान्यता है, उनके संस्था मैंने देखा कि महिला होती है, साधक होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं होती। कई पॉलिटिशियंस के अंदर देखा वो बहुत कम, अपने देश में प्रधानमंत्री कितनी महिला हुई, कम हुई, एक हुई, तो बाकी क्यों नहीं। तो उसके लिए कार्य मैंने बोला कि चलो हम कार्य शुरू करते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण से ही ये होने वाले, पर होगा कैसे, तो उसके लिए हमने पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्त्री है वो भारत विश्वगुरु अगर करना है तो मैंने बोला अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना ही, वो किस तरह से होगा, तो हम पहले से बोल रहे हैं कि नारी समान हो जाए, समान वो समान तक खोज रही है कि मैं पुरुषों के समान, हाँ समान। मैं एक ही बात कहने वाला गुरु हूं कि स्त्री नारी कभी भी पुरुष के बराबर नहीं थी, वो हजार गुना कम से कम शक्तिशाली है। वो हजार गुना शक्तिशाली कब थी, कब होगी, वो बताता हूं, क्योंकि हर पुरुष हर स्त्री ये जो कोई संसार में आता है किसी माता के गर्भ से ही आया हुआ है, तो जब माता के गर्भ से आता है तब उसकी शक्ति का हजार क्या कई लाख गुना ज्यादा होगी, जब वो छोटा बच्चा था तब उसको वो बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करती है, जबकि चाणक्य जी बोलते हैं लालये तो पंचवर्षाणी ताड़ये तो दशवर्षाणी प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत, उसको 5 साल तक लालन पालन करो ठीक है, लेकिन अगले 10 साल उसको सिखाओ ताड़न, और उसके बाद उसी टाइम उसको नहीं मारा, मारा मतलब अगर नहीं सुनता है तो, तब तुम्हारी शक्ति थी हजार गुना, तब थी, तब इस्तेमाल करना था, उसी में से तो कोई चोर गुंडा डाकू कोई तो बलात्कार या कोई तो बनता है ना उसी समाज से, तब वो तुम्हारी शक्ति हजार गुना थी। तो वो मैं सबको हमारे संस्था द्वारा वो सिखाते रहता हूँ स्त्रियों को कि वो सही समय पर इस्तेमाल करो। उसके बाद बहने होती है दीदिया, तो बोलते तुम भाई दूज जिसको बोलते ना, या रक्षाबंधन, वो सेलिब्रेट तो करती है और अपेक्षा करती है, हम संस्कार अपने है कि वो रक्षा करेगा मेरा भाई, पर वो वही भाई रक्षा कर पाएगा जो खुद ब्रह्मचर्य पालन करता है, क्योंकि इस स्त्री को जब कभी तो प्रॉब्लम आएगी तो पक्का समझ लेना ये किसी और स्त्री को तकलीफ देगा तो वो हमको रक्षण नहीं कर पाएगा। सीता माता का भी हरण हुआ था लंका में रावण जी के पास, तो रावण के पास गया था लेकिन वो प्रोटेक्टेड हुई, क्यों, तो यार राम तब तक ब्रह्मचर्य जैसे थे, वहां उनकी तपस्या शक्ति थी, तब उसको भी शक्ति, उसका अपना पतिव्रता धर्म भी तो था, उसको मैं मना नहीं करता हूं, तो ये चीज मैं समझाते रहता हूं सारी महिलाओं को। चलो दूसरी बात होती है माता का विषय आ गया, तो माता शक्तिशाली होनी चाहिए। तो जब तक आप एक मां को नहीं समझ पाते, कोई भी लड़के, आज के मॉडर्न लड़के तो माता पिता को इतना सम्मान नहीं देते, ऐसा स्थिति आज के मॉडर्न लड़कियों का बता रहा हूं। तो जब तक आपको एक माँ ही नहीं समझेगी तब तक कभी गुरु नहीं समझ में आता, क्योंकि हम गुरु को गुरु माउली करके बोलते हैं, गुरु माता करके बोले जाते हैं। तो हमारे अंदर हर एक के अंदर एक महिला और एक स्त्री दोनों अंग हमारे अंदर होता है, हर हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे बाह्य शरीर पुरुष का हो स्त्री का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर दोनों तत्व विद्यमान है। और जब तक ये बैलेंस नहीं करते तो मेरा कहना है कि आपको मुक्ति अगर होनी है, मोक्ष मिलना है, तो अंदर के दोनों तत्व पुरुष और स्त्री समान आपके अंदर आना चाहिए। तो कभी तो कठोर भी होना आना चाहिए, कभी निर्मल प्रेम दोनों होना चाहिए, दया प्रेम क्षमा ये सब किसके गुण है, स्त्रियों के। तो कोई भी गुरु जैसे ज्ञानेश्वर माउली करके हम बोलते हैं महाराष्ट्र में अगर है वहां से, तो कोई भी हो उसको क्या बोलते हैं, माउली माता। तो माता के गुण उसके तब तक कोई भी बड़ा नहीं बन पाएगा। एक गुरु भी गुरु तब कहलाता है जब वो स्त्री के तत्व उसके अंदर अधिक हो ना, शरीर चाहे पुरुष का हो कुछ भी हो। तो मेरा यही कहना होता है कि महिलाओं आपके अंदर तो पहले से वो सब दया प्रेम क्षमा दान वो सब है कि नहीं है, वो पहले से, तो फॉर यू इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट मोक्ष। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, भगवत गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 34 में श्री कृष्ण ने स्त्रियों का कौन से गुणों में मैं अधिक विद्यमान हूं करके बोला है, तो बोलते श्री वाक, वाक मतलब वाणी, श्री श्री मतलब उसका ऑस्पिशियसनेस उसका मांगल्य। उसके बाद उन्होंने बोला है कि धृति स्मृति मेधा क्षमा, हाँ ये सब गुण जो होते उसमें मैं विद्यमान हूं। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं किसमें विद्यमान हूं क्या करती हूं। तो प्रॉब्लम ये है कि श्री श्री मतलब लक्ष्मी, तो दैवी संपत्ति मेरे अंदर अधिक होनी चाहिए, तो क्षमा दया प्रेम वो तो है उसके अंदर, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। जब कभी वो किसी के घर में बहू बन के जाती है तो हम पहले नहीं बोलते कि गृह सरस्वती आ गई या गृह काली आ गई, नहीं गृह लक्ष्मी आ गई। तो वो लक्ष्मी मतलब सिर्फ धन बाह्य धन का बात नहीं करते, वो एक्चुअली उसके अंदर भी घर में कुछ प्रेम ऐसे शांति का वातावरण आएगा, कभी तो ये माता भी बनेगी आगे, बराबर। एंड जैसे स्त्री माता बनती है अपने आप उसके अंदर वो परमेश्वर का भाव विदाउट फेल एक क्षण में अपने आप आता है। तब तक उसने देखा नहीं होता है कि मेरा पुत्र का शरीर या उसका रूप कैसा है, काला गोरा है, वो हैंडीकैप होगा नहीं होगा क्या होगा कुछ नहीं, बट जैसे आता है ऑटोमेटिक वो प्रेम आत्म तत्व से कार्य करने चालू करती है। ये भाव आवश्यक है, बराबर कि नहीं, हर हर इसमें। तो पहला हम बोलते स्त्री का वो श्री करके बोला है, हमारे अंदर होना चाहिए, तो गृह लक्ष्मी करके बोलते हैं। अपने घर में वास्तविक लक्ष्मी तीन बार आती है, देवी पुराण पढ़ लेना। सर्वप्रथम मेरी माता के स्वरूप में ही वो होती है, जब तक मैं उसको माता करके ठीक से स्वीकार नहीं करता हूं, मतलब वो सारे उसके सुनता नहीं हो, उसका प्रेम भी नहीं समझ में आता है, वो एक एक लड्डू तो खा करके, क्योंकि 2400 घंटे किसी माँ के मन में कुछ आता है तो अपने पुत्र या पुत्री के बारे में, इसके अलावा उसके मन में कुछ नहीं होता है, तो शायद वो संसार से अनजान होगी, उसको लेटेस्ट कुछ चीज पता नहीं होंगी, और हम बोलते हैं कि वी रिजेक्ट हर एडवाइस समटाइम्स। तो श्री आपके घर में नहीं होता आता ज्यादा। दूसरे बार लक्ष्मी आती है, वी रिजेक्ट दैट। दूसरे बार जब आती है वो बाहर से कोई शादी करना चाहती है, आती है वापिस एक बार लक्ष्मी, वाई हुई बहू का सम्मान जिस घर में नहीं होता, वापिस एक बार श्री चले जाती है। तीसरी बार वो आती है जब पुत्री के रूप में जन्म लेती है, ये देवी पुराण में बोला है। एंड लोग बोलते हैं अरे रे लड़का होता तो अच्छा होता, याद रखना उसी घर में अधिकतर श्री नहीं होते, एंड श्री आया तो उसका उपभोग नहीं होता, उपभोग हो गया तो उसका आनंद नहीं मिलता। हाँ ये श्री वाक, वाक मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं मैं देवी के स्त्री के स्वरूप में वाक के स्वरूप में आता हूं, वाक मतलब वाणी। तो स्त्री की वाणी कैसी होनी चाहिए, हम अक्सर बोलते हैं प्रेममयी करुणामयी ऐसे सब उसका स्वरूप होना चाहिए, ठीक है नो प्रॉब्लम, पर सिर्फ उतना ही होना काफी नहीं, बोला है कि दुर्गा देवी का बोला है अति सौम्य अति रौद्र उसका स्वरूप बोला है। अभी दुर्गा देवी पढ़, दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना, अति सौम्य अति रौद्र। तो रौद्र स्वरूप वो अक्सर पति के सामने आ जाता है एंड सौम्य स्वरूप बाहर आता है, कितना भी बाहर अत्याचार वो सहन कर लेती है, जबकि करना वो नहीं था, सौम्य कहां था, घर में होना चाहिए था उसका रूप अति सौम्य, एंड बाहर जहां अन्याय हो रहा है, हाँ जहां कुछ ऑफिस में हो या बाहर कहीं तो अत्याचार होता होगा उसके ऊपर, तो अति रौद्र भी उसको होना है, ये सीखना ही होगा। तो हम वो सर्वप्रथम दुर्गा देवी में पहला अध्याय जो आता है वो पहला उत्तम चरित्र सॉरी उत्तम पहला चरित्र उसका काली उपासना बोलिए सर्वप्रथम, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा सरस्वती माँ सरस्वती। तो काली इज वेरी वेरी इसेंशियल, तो उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर आता हूं। सशक्तिकरण में है तो काली शक्ति क्यों आवश्यकता है, कलयुग में तो खास करके बोला है, तो आता हूं उस पॉइंट पे। दूसरा क्या बोला, वाक, वाक में तो क्लियर हो गया कि बोलना क्या था, कहीं पे कड़क रहना होगा। सासू माँ बोल रही है सुने कहां तक, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। मैं हमेशा स्त्रियों को बोलता हूं जो पहले एक या दो साल जो आप आपका इमेज बनाओगी ससुराल में दैट विल बी देयर फॉर एवर। एंड मैंने कई महिलाओं से मिला हूं, कई हमारे सेमिनार शिविर मैंने लिए, तभी तो जाके ये शायद वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट महिलाओं का संस्था है। तो मैं जब बुलाया मुझे दीदी ने तो मैंने बोला कि मेरा कुछ तो कार्मिक बॉन्ड यहां पे होगा, यहां मैं आऊंगा ही, आता भी रहूंगा जाए। तो ये बात यह करनी थी। तो एक थी श्री, एक था वाक, दूसरा था स्मृति मेधा धृति। ये श्री कृष्ण बोलते हैं महिलाओं के विशेष गुण है। नाम सुनते ही समझेगा, स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी। दूसरा होता है धृति, धृति मतलब धारणा शक्ति, होल्डिंग ऑन समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उसको धारणा बोलते हैं। जो आपने अष्टांग योग में है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें धारणा होल्डिंग ऑन कुछ तो करके दिखाना है, ठीक है धारणा। एंड दूसरा होता है मेधा शक्ति, मेधा शक्ति कम्स फ्रॉम एक्चुअली उसका जब ब्रह्मचर्य पालन होता है बहुत 12 साल का एक तप होता है, उसके बाद वो वीर्या रज वो ओजस बन के उसके बाद वो तेज उसके अंदर आता है वो पुरुष हो या स्त्री में, उसके बाद आती है मेधा शक्ति। मेधा शक्ति मीन्स एक बार कभी तो सुन लिया गलती से एक बार, फिर वो राइट टाइम पे उसको प्रोड्यूस करके दिखाना एज इट इज, दिस इज कॉल्ड मेधा शक्ति। तो जो अध्यात्म में वेदांत में ये सारे गुण आवश्यक है, तो श्री कृष्ण बोलता है मैंने ये महिलाओं को भर भर के दिया, जिस महिला में ये है उसके स्वरूप में मैं व्यक्त होता हूं परमेश्वर। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कलयुग में ये शक्ति तो बाय डिफॉल्ट ही हम पुरुषों को तो वो डेवलप करनी पड़ती है। अजी वो सब्जी लेकर आना, अजी ये लेकर आते आते बोलते हैं मैं भूल गया जी। तो ये भूल गया जी, अगर महिला आपको ननंद ने मुझे क्या बोला था 20 साल पहले वो बराबर स्मृति भी रहेगी, ध्रुति इसको देख लूंगा, गलती से पति ने कुछ मिस्टेक निकाला तो मैं कहां गलत गया था, इतना किसी पुरुष ने पूछा तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं आपने पत्नी को जाके इतना यह बोल देना कि उसने एक गलती क्या की थी बता देना, वो शायद तुमने तुम्हारी माता ने तुम्हारे परिवार ने क्या क्या गलतियां की थी कब कब की थी वो सब बता के सकती है राइट टाइम पे। दिस इज दैट स्मृति, ध्रुति भी एंड मेधा राइट टाइम पे बराबर वो फंक्शन में ही जाके बता और बात करेगी। तो दिस इज द क्वालिटी दैट वुमन हैज। बट वो बोला है उत्तम पुरुष वो जो 5 मिनट में बात एक्चुअली भूल जाती है, कौन सी गुरु की बात नहीं, वो नहीं भूलना है, वो तो धारण आयुष्य पर करना है, ये सब सारी बातें। मध्यम पुरुष वो जो 1 हफ्ते में भूल जाता है, कनिष्ठ पुरुष वो जो शायद 1857 की बात भी आज तक लेकर आ सकते हैं, तभी तो झगड़ा होते रहते सब कि तुम्हारे दादाजी ने पर दादाजी ने ये किया था, वो पर दादी ने ऐसा ऐसा बोला था, इन्होंने किया था, दैट कंटिन्यूज। तो वेदांत सीखने के लिए जो लगता है वो गुण स्त्रियों के पास है, ओनली थिंग श्री कृष्ण बोलता है कि ये याद रखना है, ये भूल जाना, ये पुरुषों की आदत लेना। शाम को बोला आते आते आप ये लेकर आई है, ऐसा हस्बैंड को बोलना क्या आता है जवाब, ऐसे खाली आता था मैं भूल गया। तो भूल जाना आदत इज मेल क्वालिटी एंड फीमेल क्वालिटी, श्री कृष्ण बोलता है ये सब है। तो वेयर एज वी हैव टू डू कॉन्शियस एफर्ट फॉर दैट, आपके पास वो अपने आप दिया है। उसके बाद एक होता है क्षमा, क्षमाशील होती है स्त्री करके बोला है, बट किसी को भी क्षमा नहीं करने को बोला है, कहीं कहीं तो दुर्गा जैसा वो आवश्यक है उसको। तो मैं हमेशा बोलता हूं लाइक सेट योर बाउंड्रीज क्लियर बिफोर टाइम, अगर वो नहीं करते तो परिवार में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऑफिस में भी कुछ लिमिटेशंस, सी चेकिंग अपना पार्टनर जो सिलेक्ट करना होता है वहां से गाड़ी शुरू होती है, एक बस होती है, बस शादी या ट्रेन समझो, अगर आप एंटर करते हो कंपार्टमेंट में सारे विंडो सीट्स किसी पुरुषों ने ले लिए है, समझो सारे विंडो सीट, एंड आपको जाना है सिर्फ 20 मिनट का प्रवास है, तब भी महिला में इतनी इंट्यूशन पावर होती है कि ये तो इसका थोड़ा सा खराब दिखता है, ये थोड़ा गुंडा जैसा लगता है, शी हैज दैट इंट्यूटिव पावर, एंड बराबर उसमें से जो सभ्य लगता है ना उधर जाके बैठ सकती है। अगर ये शक्ति तुम्हारे अंदर है तो जीवन साथी चुनने वो कहां चली जाती है, तब वो माया में, क्योंकि यहां बुद्धि लगाई थी, यू हैड यूज योर बुद्धि, पर यहां कुछ तो हो जाता है कि वो भावना अधीन होती है। अपना शास्त्र बोलता है कि वो तब बुद्धि उसका प्रॉब्लम कहां होता है, क्योंकि लाइक चार फैक्टर्स होते हैं, एक होता है शरीर, एक मन, एक बुद्धि और एक होता है आत्मा, तो उसमें खास करके पुरुष ये शरीर स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे जीते है। बुद्धिवादी साइंटिस्ट है, सब कुछ है, लॉजिक लगाते रहेंगे हर बार, दिस इज हाउ मैन आर मेड। एंड दूसरा है शरीर बोध वाला, पशुतुल्य, काम करो, हैवी वर्क है सब। एंड महिला अक्सर होंगी वो माइंड के लेवल पे काम करती है, ऐसा नहीं कि उनको बुद्धि नहीं है, उनको शरीर नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूं, या पुरुषों को कोई मन ही नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूं। शी विल वर्क एट द लेवल ऑफ मन, भावना होते हो, बहुत भावना प्रधान। और दूसरा होता है सीधा आत्म तत्व लेवल पे, जैसे माता बन गई, सब कुछ हो गया, तो एकदम भावना प्रधान एंड एकदम मुक्त, ये दो ही स्थिति उसके पास होती है। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई महिला पुलिस भी होती है, दीदी जरा काम कर दो ना, ये महिला पुलिस सुन लेगी, थोड़ा सा अंदर जाने दो ना, थोड़ा ही करो, पुरुष नहीं करेगा, तो ये जो है शी हैज टू टेक केयर वाइल सिलेक्टिंग द पार्टनर ऑल्सो, ये बुद्धि से तुमको मैनिपुलेट कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। हमेशा हम अपने शिविरों में सिखाते हैं हाउ यू शुड नॉट लूज दैट, जैसे बना बस का जो उदाहरण था, उतनी शक्ति तो हमारे अंदर होती है, वो करना होगा। उसके बाद तो ओके, पतिव्रता स्त्री करके हम जो बोलते हैं, सब पॉइंट पे आता हूं, शिक्षण का इसका तीन चार पॉइंट सब दिए थे। तो एक होता है पतिव्रता, तो पतिव्रता नारी हमारे संस्कारों में बैठ गया है कि सब कुछ सिर्फ अन्याय सहन करो, ये पतिव्रता धर्म नहीं होता है। पति को दारू का क्लास लाकर देने वाली स्त्री को पतिव्रता नहीं बोलते, उसका दारू छुड़ाने वाली होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए जितना चाहे वो लड़ सकती है, उतनी उसके अंदर काली शक्ति आनी चाहिए, वो गलत मार्ग पे जाता है। तो हमारे अंदर ब्रिटिश और मुगलों के टाइम से कुछ महिलाओं को कमजोर करने के लिए शास्त्र में बदल किए गए, ये मैं बताना चाहता हूं कि वो पतिव्रता धर्म का वर्णन जो किया है वो थोड़ा डाइल्यूट किया, चेंज किया हुआ है। शिव जैसा सामने पति होगा तब वो पार्वती जैसा बनना है बोला है, अदरवाइज पतिव्रता शक्ति से वो बदल तो जाएगा, लेकिन किसके लिए मैं इतना वेस्ट करूं टाइम, ये भी आपको समझना होता है, वेन टू क्विट, वेन टू स्टॉप, वो सब। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बोला कि सब कुछ पॉइंट्स इतना टाइम में नहीं, मुझे बोला कि सागर आपका आगर में भर के उनको थोड़ा सा देना, तो ठीक है उतना ही दे रहा हूं। मुझे बोला तो थोड़ा बाइट भी देना होगा, मैं बोला कि कम से कम ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा, उतना है मेरे पास सब कंटेंट। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में सब बताता हूं। शायद आई एम वन ऑफ द गुरु जो जब महिला आते हैं तो उनको एक ही बात करता हूं, पाउडर लिपस्टिक लगाने वाली स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, नहीं तो लक्ष्मी जी का फोटो निकाल दो, बिकॉज शी इज शोन लाइक दैट। एंड अगर वैसा नहीं है तो सिखाते क्यों हैं, वो स्वरूप भी काली लक्ष्मी वो सब भी ना, सिर्फ सरस्वती स्वरूप नहीं है, एक स्वरूप है, एक अंग है, वो दूसरे भी तो है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। मतलब अभी कोई कलयुग है, धन के बगैर काम नहीं होगा, धर्मस्य मूलम अर्थ, तो एक ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, मतलब महिला सशक्तिकरण, तो शक्ति कौन सी आनी चाहिए, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट उसमें से एक होती है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महाकाली की शक्ति, फिजिकल प्रोटेक्शन, हम बोलते हैं कराटे सीखना चाहिए तो स्टार्ट, दैट इज द बेसिक लेवल, उससे भी हायर प्रोटेक्शन होता है आध्यात्मिक शक्ति, वो अगर होगा तो आपके पास वो शत्रु बुरी नजर से देखता ही नहीं है। ये सब चीज आनी चाहिए, बट इट इज लाइक एक वाक्य में सिर्फ होगा नहीं, तो ऐसा गुरु आपके अंदर वो शक्ति डाल सकता है जो खुद वो महिला का दर्द समझता है, जीता है, देखता है, ही फील्स दैट। एट द सेम टाइम पुरुष तत्व, अर्धनारीश्वर बोला ना, वो उसके अंदर बराबर का होना आवश्यक है। तो सर हमारे संस्था में लगभग 70-75% इसलिए महिला होती है जिसका इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूं। दूसरी बात होती है आपकी हेल्थ, हेल्थ हम बोलते ना कि जैसा वेल्थ हमने बोला धन, तो हेल्थ इज वेल्थ भी बोलते हैं। तो महिलाओं को पूरा दिन भर काम करते रहती है एंड वो जो आज की स्थितियां है परिवार की, उससे होता यह है कि वो बोल नहीं पाती, वो समाज ऐसा ना कि सुनना है, तो सासू माँ ने कुछ बोल दिया, इसने बोल दिया, अगर आप व्यक्त नहीं करोगी तो थायराइड होता है। भारत में मैंने स्टडी किया है, क्योंकि हम हीलिंग के शिविर करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग लेडीज इन इंडिया दे गेट थायराइड, रीजन है वो वाणी यहां तक अटकती है, बोलती नहीं है। दूसरा उसको फियर ऑफ द अननोन हो जाता है, घर में ये बोलेगा वो ना बोलते होते, घुटनों का दर्द आता है, आपको लगता है मैं कार्य करने से होता है, नहीं, दैट इज द रिसर्च दैट वी हैव डन, वो आता है उसी के वजह से। फिर हम महिलाओं को एडवाइस कर दिया कि आपको कभी तो वो व्यक्त तो करना ही होगा, वो व्यक्त एकदम चिल्ला के करना चालू कर दिए। बोला कि ये करोगे तो ठीक है, थायराइड तो नहीं होगा पर हार्ट का प्रॉब्लम आएगा या बीपी का कुछ होगा, बताना है लेकिन थोड़ा योग्य स्वर में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं फास्ट अपना काम करता हूं, बता देता हूं, ठीक है। स्त्री मॉडर्न तो बन गई, क्योंकि हजार हम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नव निर्माण करना है, नया कुछ फ्यूचर कुछ करना है, तो इतिहास पहले जानना जरूरत है। आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो पहले वो क्या पूछता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, क्या हुआ था पहले, वो उसके बगैर डायग्नोसिस ही नहीं हो सकता। तो इस देश में अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो महिला के साथ पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इस 2000 इयर्स, कितने अत्याचार हुए थे, क्यों हुए थे, वो सब देखना ही होगा, वो देखने के बाद ही आगे होंगे। चलो नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बोला था कि भारत को विश्वगुरु बनना है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो पहले इसको गुरु बनना है, तो गुरु मैंने क्या बोला, गुरु मां स्वरूप में होने चाहिए। तो अगर आप ज्योतिष जानते हो तो गुरु उच्च किस राशि में होता है, किसी को पता है, कर्क राशि में होता है। कर्क राशि चंद्र की, चंद्र माता का स्वरूप, वही टीचर जो माता जैसा सिखा सकता है तभी वो होगा, उतना टाइम देने वाला। मां कभी बच्चे से कुछ फी नहीं मांगती। धनु राशि में स्वराशि का होता है बट वो फायर साइन कड़क, वैसा टीचर लोगों को अच्छा लगता नहीं है, बराबर। मीन राशि में थे इमोशनल उतना भी नहीं अच्छा लगता है, तो मां जैसा होना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना कि अगर आपको भक्ति करनी है तो पहले स्त्रीमन तो आना ही चाहिए आपके अंदर। एक मां जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपको गुरु नहीं समझ सकता, गुरु मां नहीं समझ सकती, गुरु मां जब तक नहीं समझ सकती तब तक भारत माता नहीं समझ सकती, वो शरण दे। एंड भारत को विश्व गुरु बनना है तो मेरा कहना है कि जो भारत को छोड़ के बाकी सारे धर्म के ही तो लोग हैं विश्व में, बाकी सारे देश, वो तुम्हारा कब सुनेंगे, क्या सुनेंगे, एक माता की तरह हम उनको समझने के लिए तैयार है क्या अभी, नहीं। हम भी उनको, वो भी हमको माता करके नहीं, हम भी उनको पुत्र की तरह आज नहीं माने, तो उसके लिए कार्य हमारा अच्छी तरह से चल रहा है। देन दूसरा होता है कि मैंने कहा कि ये शक्ति स्वयं आपको, अपने आप कोई देगा ऐसा लगता है कि स्थान स्वयं का प्राप्त करना होगा। कलयुग है, सोचकर बताना। हम बोलते तो है यत्र पूजन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, ठीक है, लेकिन पूजा करेगा कौन, कोई पुजारी तो चाहिए। कलयुग आसुर का राज है, वो पूजा करेगा कौन, तो तुमको पूजा उसी की होती है जो शक्तिशाली होती है। वहां पे वो चंड मुंडा शुंभ निशुंभ किसी का नहीं चलता, बट वो गुण लाने ही होंगे। तो अब ये आपकी जो संस्था है तो बहुत अच्छा काम कर, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा, बहुत दिन से पूछ लिया आपसे, पूछ लिया चक्रवर्ती जी से, थोड़ा सभी से पूछ के देखा कि कार्य बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम यही सिखा रहे, यही सब कुछ है नॉलेज, तो ठीक है, ओके। दूसरा, एक दूसरा होता है कि वस्त्र, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम बोलते हैं ना सरस्वती स्वरूप, तो आप सबने सरस्वती स्वरूप धारण किया है सफेद, लेकिन मैं बोलता हूं कि कभी भी वो लक्ष्मी और काली ये रूप, तो कोई स्त्री बोलती है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूं, कोई पॉलिटिशियन में है अभी तो बाकी सारे कर रहे, तो वो कोई गलत काम थोड़ी है, उसमें भी देवी काली स्वरूप आपको देखना आना चाहिए। कोई बिजनेस वूमन बनती है तो बिजनेस वूमन तो धन, वो भी कोई गलत नहीं है, वो लक्ष्मी का स्वरूप लेकर है। एंड कोई सरस्वती ज्ञान स्वरूप, तो ऑल थ्री, तो हम ऐसा कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कुछ नहीं रखते, ठीक है। तो मुझे ख्याल से ज्यादा समय अभी मैं नहीं लेता हूं आज, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए आपके हिसाब से अभी मैं आप सभी को पूछ रहा हूं, एक गुरु की आवश्यकता होगी, लेकिन वो गुरु कैसा होगा, गुरु कैसा होना चाहिए, अभी आप ही बताइए गुरु कैसा होना चाहिए। एक नारी, नारी का मन उसके अंदर होना चाहिए, तो बट सिर्फ नारी का मन होगा तो उसके वी आर टेकन एडवांटेज ऑफ अगन, तो थोड़ा पुरुष तो अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूप में बनना होगा हमको, थोड़ा कड़क भी। तो मैंने यहां पे देखा कि आप तो कर रहे आपने जो मुझे बताया अभी, तो सौम्य रूप भी है बहुत, वो भी जरूरत है। एंड मैं बोल रहा हूं कि अति सौम्य अति रौद्र दोनों रूप होने चाहिए। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बात करता हूं, थोड़े दो शब्द खत्म करता हूं, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत सुंदर शब्दों में आपने जो महिलाओं के लिए उपयोगी बातें हैं और उनकी विशेषताओं को भी उनके सामने रखा, उन्हें रियलाइज कराया कि वो क्या हैं और उनका आध्यात्मिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो जब आप विशेषताओं की बात कर रहे थे तो मेरे मन में जो चल रहा था कि एक विशेषता ये भी है कि कहां अगर चार महिलाएं बैठी हैं तो चुप नहीं रह सकती हैं, अगर वो चुप हैं तो वो एक जोक है। तो इसीलिए जो शिव बाबा जिन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, परमात्मा शिव ने, उन्होंने ज्ञान का कलश माताओं बहनों को दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो जो ज्ञान सुनेंगी वो स्वयं तक नहीं रख पाएंगी, वो चार लोगों को जरूर सुनाएंगी। तो इसीलिए बहुत जल्दी विश्व में ये ज्ञान का प्रसार होगा और जो आपका लक्ष्य है कि भारत विश्व गुरु बन जाए तो उस लक्ष्य तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूं हमारी बहन संजना जाटव जी को, आप माननीय सांसद हैं भरतपुर से, आप भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं। 2024 में भरतपुर से संसद की 18वीं लोकसभा के लिए आप चुनी गई और राजस्थान की आप सबसे युवा सांसद हैं, ये आपकी विशेषता है। आपने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के गांधी ज्योति कॉलेज से बीए और लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। आपको कांग्रेस पार्टी में एक युवा उभरते सितारे के रूप में देखा जाता है जो मेवात में बड़े पैमाने पर अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क की कमी, किसानों को उचित मूल्य पर खाद और बीज दिलाने के मुद्दों से निपटने के लिए अभियान चला रहे हैं। आप क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के महत्व का संदेश फैलाने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी नेतृत्व कर रही हैं। तो आपके लिए मैं कहूंगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें संजना जाटव जी का अनुभव युक्त उद्बोधन सुनने को मिले तो और क्या चाहिए।
मेरे साथ आप बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच, मंच पे विराजमान, आज यहाँ आपके बीच में जिन्होंने मुझे बुलाया है, हमारी बड़ी दीदी चक्रधारी जी, यहाँ हमारी सभी जो बड़ी दीदियाँ हैं और सम्मानित मैं मंच कहूँगी, महिला शक्ति और यहाँ तमाम हमारी मातृशक्ति, मेरी तरफ से आपको सभी को सरदारी को नमस्कार। अभी जो परिचय हमारी जो दीदी है उन्होंने दिया है, जो आज कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया है, पहले तो मैं यहाँ उनकी पूरी संस्था को और हमारी जो जितनी भी मातृशक्तियां हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ही गौरव का विषय है और एक गौरव की बात है। मैं राजस्थान से ही हूँ और कांग्रेस से यंगेस्ट एमपी भी हूँ और यहाँ आपके बीच में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ आई हूँ, मुझे इतनी शांति मिली है, इतनी शांति मिली है, मैं जितना कह सकूँ उतना कम है मेरे लिए, मन की शांति। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ जहाँ कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार जो सामान्य वहां से निकलकर आज राजनीति में आना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात मानती हूं मैं इस चीज को, क्योंकि महिला एक परिवार संभालती है, एक घर संभालती है और आसपास के इलाके जो भी जहां रहती है वहां को भी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, अभी आचार्य जी ने भी बहुत कुछ कहा था, मैं तब से ही सुन रही हूं। उन्होंने अच्छी बात ये कही थी क्योंकि महिलाएं जैसे कोई टीचर हो जाती है तो वो खुद का तो परिवार संभालती है, जहां जिस परिवार में वो जाती है वो भी संभालती है, आसपास के जो भी जितने भी वहां के पड़ोसी हैं, हर लोग हैं, तो वो भी एक शिक्षित होते हैं, वहां पे जागरूकता होती है। और ये जैसे महिला सशक्तिकरण है तो आप में खुद में ही एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और मैं तो महिलाओं को एक दुर्गा का रूप समझती हूँ, क्योंकि वो हर चीज की कैसी भी लड़ाई हो वो लड़ सकती है, हर 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 बात के लिए। वो जैसे कहते हैं कि अभी बताया उन्होंने कि परिवार को वो करना, जैसे कि उनको सब कुछ पता होता है कि घर में क्या है, क्या चल रहा है, क्या कमी रह रही, ननद को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, बहन को क्या चाहिए, उनको सबको खबर रहती है। तो वो आप जान सकते हो कि महिला कितनी जिम्मेदार है, वो हर चीज में आगे रहती है। और मैं आपको बताना भी चाहूंगी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि महिलाएं एक परिवार घर तो संभालती है, मैं इतना भी मैंने देखा है, क्योंकि महिलाओं में इतना जैसे खाना बनाती है, अगर खाना कम भी रह जाता है ना, तो पहले वो अपने सास ससुर माँ बाप भाई बहन उनको वो करती है, तो वो खुद भूखी रह के पहले अपने परिवार का सबसे पहले सम्मान करती है हर चीज से। मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे परिवार की वजह से हूँ, और मैं मुझे कोई कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं मेरे परिवार और खुद मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ, जिन्होंने एक शादी के बाद आप जान सकते हो कि शादी के बाद ये सोचते हैं कि भाई क्यों पढ़े, किस लिए, कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, LLB उन्होंने कराई। और आज जो राजनीतिक यहाँ तक का जो सफर था, मैं कहना चाहूंगी आपसे कि मैं अभी कुछ पहले मतलब विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 409 वोट से रह गई थी, फिर मेरे परिवार ने जैसे एक टूट जाते हैं जिस तरीके से भाई 409 वोट से रह गए, और वहां परिवार में भी आप जानते हो कि एक सामान्य परिवार से राजनीति में आना बहुत बड़ी बात होती है, पर मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया मुझे यहां तक पहुंचाने में, मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने, मेरे पूरे समाज ने, सर्व समाज ने आज यहां तक इस मंच तक पहुंचाया है, तो उसके लिए भी मैं हम सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप सब भी, ऐसा नहीं है महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, अगर ठान के बैठ जाएं कि भाई हमें तो घर का एक अच्छा वातावरण हो, जैसे मन की शांति हो, हमें हमारे बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये हमको ही करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं परिवार में स्वयं सुधरेंगे तो खुद जब दूसरों को आप सुधारोगे, तो पहले ये जो नियम है सारी चीजें वो खुद लागू करें। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे यदि एक नारी जागेगी तो, और वह आध्यात्मिक रूप से जागेगी तो युग में बदलाव आएगा। आप जानते हो कि जब नारी शिक्षित होती है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो घर परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ करती है। जैसे महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान को हम सबको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आपको पता है कि अगर कोई घर में कोई बात हो जाती है तो वो बहुत जल्दी से ही दुखी हो जाती हैं। उनका जो दिल है बहुत, मैं मानती हूँ छोटी सी कोई घर में कोई बात हो जाती है तो वो दुखी हो जाती है कि हमसे क्या कह दिया। तो मैं कहना चाहूंगी आपसे कि हम सबको मजबूत रहना चाहिए। और जैसे कि मैं भी खुद एक महिला हूँ, मेरे परिवार में मेरी सास है, ससुर है, भाई है, भाभियां हैं, तो अगर कोई बड़े बूढ़े होते हैं तो एक अच्छे के लिए करते हैं तो उनको सुनना चाहिए, उनका मान सम्मान हमें रखना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि परिवार में जो हमारी सास होती है वो आप सोच सकते हो वो पूरा घर संभालती है, आपको संभालती है। जब आप नई नई बहू बन के आती हो, घर में जाती हो, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप पे नहीं होते हैं, आप नहीं जानती हो, वो आपकी सलाहकार बनती हैं, आपकी सहेली बनती हैं कि चलो कोई बात नहीं, उस पर नहीं आता है तो उनको सिखाने के लिए। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मुझ पर भी कुछ नहीं आता था, तो मेरी हमारी जो मम्मी है, मेरे हस्बैंड मतलब मेरी सासू माँ, उन्होंने आप विश्वास नहीं करोगे मुझे यहाँ तक का सफर, और मुझे मेरी खुद की माँ से भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद के परिवार से निकलकर और दूसरे परिवार में जब जाती है बेटी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे घर वाले होंगे, कैसा क्या होगा। पर मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मुझे हमारी ऐसी मम्मी मिली है जिन्होंने मुझे यहाँ तक का सफर, और आज भी आज मैं आपको बताती हूँ, मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरे खुद के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनको पीछे से वो संभालती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं। वो कौन करती हैं? वो हमारी माँ करती है। अगर वो इसलिए क्योंकि हमको समझना, खुद को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी माँ को खुद जैसा समझेंगे जब तो वो आपके साथ रहेंगी। अगर उनसे ही अलग से आप व्यवहार गलत व्यवहार करोगे तो वो आपके साथ खड़ी नहीं रहेंगी। उनको सिर्फ प्यार की जरूरत है, मन की शांति चाहिए, और आप जितना प्यार, और एक तरीके से कहूँ कि आप उनको मान सम्मान दोगी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ वो आपके जहाँ आप खड़ी हो ना उनसे चार कदम आगे वो आपको मिलेंगी। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस छोटी सी कम उम्र में, मात्र 25-26 साल की उम्र में, एक पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, मैं आज सबके आशीर्वाद से एक सांसद बनी हूँ, और यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात मैं मानती हूँ। मैं सभी हमारी दीदियों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलवाकर जितना मुझे मान सम्मान दिया है। मैं विश्वास, इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं मन से इतना खुश हूँ आज, क्योंकि एक तो मैं वहाँ बैठती थी और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको मन में बहुत कुछ करना है, और वो इस तरीके से ये तब होगा, शिक्षित होगा, आर्थिक समानता से होगा। जैसे मैं बताती हूँ कि पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, संविधान में जब आए तो अधिकार मिला हम सबको, हम बराबरी से तो बैठ सकते हैं, पहले तो हमें वो भी नहीं था। तो ये सोचने वाली बात है कि हम सब एकजुट होके, और इस तरीके से ये जो यहाँ, और मैं कहना चाहूंगी यहाँ से कि ये राजस्थान में ये सबसे बहुत बड़ी बात है, ये संस्थान यहाँ पे, और इतनी महिलाएं यहाँ एकाकृत होके अपने परिवार को देखती है, आस पड़ोस के इलाके हैं जहाँ को प्रभावित करती हैं, और जहाँ रहती है, मैं तो इतना मानती हूँ जहाँ रहती है महिला में खुद ही एक दुर्गा है, खुद ही एक शक्ति है, उसको कोई शक्ति की वो नहीं, खुद ही स्वयं शक्ति है, वो खुद ही अगर चाहे तो जैसे कहते हैं ना कोई काम नहीं होता है तो वो सोचती है कि पड़ोसियों में कुछ होगा, आस पड़ोस में परिवार में ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं करेगी नहीं, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ महिला का ठाने तो बहुत कुछ कर सकती है, उसमें होने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और यहाँ वो शक्ति आपको पता ही है, यहाँ शक्ति ऐसी खुद ही विराजमान बैठी हुई है जिनका मैं परिचय दूँ, और उन्होंने तो हम तो एक परिवार संभालते हैं, हम समाज से वहाँ से आते हैं, आर्थिक रूप से भी आपको देखा जाए तो उस तरीके, तो यहाँ तो वो तो देश भर में ये संस्थान, इतनी बड़ी संस्थान को चलाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ से निकल कर जैसे बाहर कोई जाता है और आगे बढ़ता है तो हम सबको उसकी पीठ थपथपा के आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, और अपने परिवार को, घर को, सभी को मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप सब अपने परिवार को प्यार दें, मान दें, सम्मान दें, वो आपके साथ, मैं आज भी कहना चाहूंगी कि वो आपसे, जैसे कोई रिश्तों में अगर कोई खटपट भी हो जाए ना तो वो आपका परिवार है, अगर कोई बात भी हो जाएगी तो आप बैठ के अगर जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक जाओ, बस परिवार टूटना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक आज राजनीति में आई हूँ, और महिलाओं को एक आवाज ये है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं चूल्हा चाकी रोटी सब्जी वहीं तक सीमित है, वो वहां तक सीमित नहीं है, आप उनको मजबूत करो। आज मैं हूँ, मैं भरतपुर से आती हूँ, मेरे क्षेत्र के इलाकों में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके घरों में जैसे दो वक्त के लिए रोटी भी नहीं है, बेचारी दिन में मजदूरी करने के लिए जाती हैं, मतलब 300-250 रुपए मिलते हैं पूरे दिन मजदूरी के लिए, घर में आती हैं, घर चलाती हैं, और किस तरीके से वो आप देख सकते हो कि वो 200-250 रुपयों में अपना बच्चों का भी देखती हैं, परिवार का भी देखती है, घर में कोई बात हो जाए तो उसको भी सुनती हैं। महिलाएं इतनी शक्तिशाली हैं और महिलाओं के लिए अगर हम सब और मिलके अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हम आपने यहाँ मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और इस पावन कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही मैं तो पहली बार जिंदगी में ही पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैं मेरी बात कहूँ तो मेरा कोई वो नहीं था, जैसे कि एक सामान्य परिवार से तो कोई पढ़ाई लिखाई भी घर से वहीं तक ही की है, तो कभी बाहर आना जाना नहीं हो। पर आज मैं राजनीति में हूँ, मैं वहां से निकल के यहाँ पे आई हूँ। तो मैं दिल से मैं आपसे कहूँ तो आप महिलाओं को, हमारी बड़ी दीदियों को मैं दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने यहाँ मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया है, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार, राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माननीय सांसद जी संजना जाटव जी का। बहुत ही दिल से आपने अपने उद्गार, अपने अनुभव हम सबके सामने रखे। एक बार फिर से करतल ध्वनि से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अभी बहुत समय से हम सुन रहे हैं, तो अभी थोड़ा आवाज से परे हम शांति के अनुभव में जाएंगे। कुछ समय के लिए योग अभ्यास कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी शीला बहन जी, जो वाशी नवी मुंबई का जो सेवा केंद्र है उसकी संचालिका है। आप पिछले 50 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं अपने कार्य के लिए। नवी मुंबई भूषण पुरस्कार, रण रागिनी पुरस्कार, राष्ट्रमाता जीजाऊ समाज भूषण पुरस्कार, और नई मुंबई में स्वच्छता और सुंदर परिसर के लिए संत गाडगे महाराज पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। आप महिला प्रभाग की सक्रिय सदस्य हैं और आपने 1974 में नासिक, कोपरगांव, औरंगाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं की और 1984 से आप नवी मुंबई में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं, त्यागी, तपस्वी, योगी हैं और आप में कुशल प्रशासन की भी कला है। तो अभी कुछ मिनट्स के लिए हम पूरी तरह से जैसे आप हमें गाइड करेंगे उस अनुसार अपने विचारों को ध्यान में ले जाते हुए ईश्वर से योग का अनुभव करेंगे।
ओम शांति। परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा की संतान, मंच पर उपस्थित सभी महानुभव, सचमुच महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिकता के द्वारा और उसका बेस जो है वह है ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाने वाला राजयोग। हम 2 मिनट के लिए इस राजयोग का प्रात्यक्षित करेंगे। अभी जिन भी वक्ताओं ने कहा कि हमारे जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, परिवार एक चाहिए, नारी में अनेक अनेक शक्तियां हैं, वह दीप स्तंभ है, लेकिन नारी के अंदर जब राजयोग सीखना सीख जाती और राजयोग सीखने के बाद उसके जीवन में जीवन जीने की कला आ जाती। राजयोग वो ऐसी साधना है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। राजयोग का अभ्यास से आपके अंदर निर्णय शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति राजयोग से प्राप्त होती है। राजयोग का बेस है ईश्वर से प्यार। परमात्मा से जिसका जितना प्यार, उसका राजयोग नंबर 1 होता है, वो प्रभु से मिल जाता है। तो चलिए हम सभी सीधा बैठेंगे और मैं आपको जो शब्द बताऊंगी उस अनुसार आपको प्रभु से मिलना है। अभी मन में ये निश्चय कीजिए कि 2 मिनट के लिए मुझे ईश्वर से मिलना ही है। मैं इतना माउंट आबू के तपस्वी स्थान पर आप पहुंचे और ईश्वर के साथ मिलन मनाना ये उसमें दूध में शक्करा का योग है। तो चलिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई एक लाइट ज्योति हूं। मैं आत्मा ज्योति, जहां तिलक लगाते हैं मस्तक के बीच में विराजमान हूं। मैं आत्मा, मेरा निज गुण शांति है। मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति है। मेरे आत्मा के पिता परमात्मा ईश्वर शांति का सागर है। मैं आत्मा ज्योति इस शरीर से निकलकर उड़ते उड़ते सूर्य चंद्रमा से सितारों से भी ऊपर, आकाश तत्व से भी ऊपर परम धाम शांति धाम ब्रह्मांड में मैं जा रही हूं। उस परम धाम में मेरे सुप्रीम सोल प्यारे पिता ईश्वर शिव भोलेनाथ मुझे निहार रहे हैं। परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु है, परंतु गुणों में सिंधु है। मेरे प्यारे पिता भगवान, मैं आपके पास पहुंच गई, मैं आपके नजदीक हूं। कितना शांति का अनुभव हो रहा, परमात्मा से मेरे आत्मा के ऊपर पवित्रता की किरणें शॉवर की तरह बरस रही है। मैं प्योर सोल बन रही हूं। आई एम अ प्योर सोल, वेरी प्योर सोल। प्यारे पिता, आप मुझे सर्व शक्तियां दे रहे हैं। ईश्वर से मुझे सहन शक्ति प्राप्त हो रही। मैं आज से हजार गुना सहनशील बनूंगी। ईश्वर से मुझे पवित्रता की शक्ति मिल रही। मैं पवित्र स्वरूप बन गई। ईश्वर से मुझे प्रेम की शक्ति, दया की शक्ति, सर्व शक्तियां मुझे प्राप्त हुई। ओहो प्यारे पिता, आई एम अ पावरफुल सोल। मेरी आत्मा की झोली भर गई। मैं आज से शांत रह के कभी भी अपने मन को क्रोधित नहीं करूंगी। विचलित नहीं करूंगी, मैं एक स्टेबल माइंड बनूंगी, सशक्त बनूंगी। ईश्वर से सारी शक्तियां लेकर मैं सर्व को बांटूंगी। ओहो प्यारे भगवान, मैं सदा आपके ध्यान में मगन रहूंगी। थैंक्स प्यारे प्रभु, मैं सदा आपकी थी, आपकी हूं और आपकी रहूंगी। ओम शांति। इस तरह आप अपने मन को हर एक एक घंटे में, 10 मिनट में, आधा घंटे में शक्तिशाली बनाइए। और राजयोग एक संजीवनी बूटी है, तो आज इस ज्ञान सरोवर के महिला कार्यक्रम में ये संजीवनी बूटी लेके जाना और अपने जीवन को, परिवार को, देश को, समाज को, विश्व को सुंदर सुखमय बनाइए। ओम शांति।
धन्यवाद शीला बहन जी का, बहुत सुंदर राजयोग का अनुभव हमें कराया। और अब हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो इस ज्ञान सरोवर परिसर की निदेशिका हैं, आप ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं और जर्मनी एवं यूरोप के सेवा केंद्रों की भी आप निदेशिका हैं, आपके आशीर्वचन हम सुनेंगे। आप 1957 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। लगभग 65 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आपने 1974 में यूके लंदन में सेवाओं की शुरुआत करने के लिए आदरणीय दादी जानकी के साथ आप निमित्त बने और उसके पश्चात पूरे ही 5 महाद्वीपों में आपने 75 देशों की यात्रा करके इस ज्ञान के प्रकाश को संपूर्ण विश्व में आपने फैलाया है। और आपके लिए मैं कहूंगी, सबकी रूहों को महकाती क्षमा, मीठी दृष्टि मीठी मुस्कान से लाती सबके दिल में बहार है, अचल अडोल शांत गंभीर स्थिति सबको देती रूहानी प्यार है। तो आदरणीय सुदेश दीदी जी से हम आशीर्वचन सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम। और हृदय कहता ओम आनंद। मंच पर विराजमान मेरी बहने कहूं, फ्रेंड्स कहूं, सेवा साथी कहूं, विश्व कल्याणी कहूं, चैतन्य दीपक लाइट हाउस कहूं, माइट हाउस कहूं, ये हीरो के हार को कितना भी नाम यहां बैठे वालों को या सामने बैठने वालों को दूं, कम है। क्यों कि एक एक आत्मा, भाइयों को भी कहती हूं आत्मा है आप, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मां उससे अलग नहीं हुई। आत्मा क्या शब्द आया पहले, परम पिता परमात्मा को भी परम पिता है फिर भी परमात्मा, भारत मां नहीं, महिमा जो है भारत माता की, गौ मां, गंगा मां। और महिमा जहां भी है, महिमा
गरिमा धरती माँ चंद्रमा जहां भी देखो माँ ही माँ है। ये विशेषता है शिव शक्तियों की। परमपिता परमात्मा ने भी जिस तन का आधार लिया उनका नाम भी, क्योंकि ब्रह्मलोक से खुद आया, परमपिता परमात्मा ब्रह्मलोकवासी हैं, निराकार हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं, तो उन पिता परमपिता परमात्मा ने भी जिसका आधार लेकर के हमको जन्म दिया उनको भी कहा ब्रह्मा। ये बड़ी माँ है, जगदम्बा माँ है। तो माँ की विशेषता अनंत है। आपने सुनी सशक्तिकरण की बात, वास्तव में तो परमात्मा की संतान चाहे मेरे मीठे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, हम सब आत्माएं सर्वशक्तिमान की संतान हैं। ओरिजिनली हम शक्ति स्वरूप हैं। सशक्तिकरण कहने में तब आया जबकि उस शक्ति की वैल्यू नहीं रही, हीरे को परखने की शक्ति कम हो गई और हीरे को कौड़ी कहने लगे, पारसमणि को पत्थर कहने लगे। उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हुई, जैसे हमारे भाई आचार्य जी ने कहा कि शास्त्रों में समय प्रति समय महिमा को थोड़ा मिक्स कर दिया, उनकी वैल्यू को कम कर दिया। तो परमपिता परमात्मा आकर के स्मृति दिलाते हैं, मीठी बहनों आप यहाँ गेस्ट नहीं आई हैं, आप अपने माँ के घर आए हैं, माए के आए हैं, और मेरे भाइयों आप बाप के घर आए हैं, आप जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने आए हैं, आप वर्षा लेने आए हैं, प्रभु की वरासत लेने के लिए आए हैं, तो आप भी शक्ति लेने के लिए आए ताकि उनके सच्चे वारिस बन करके उनकी संतान, ऐसी संतान जो प्रभु का नाम अपने पिता का नाम प्रत्यक्ष करे। तो इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय बेशक शक्तियों को कलश परमात्मा ने दिया, परंतु कर्तव्य फिर भी भाई और बहन दोनों मिलकर के कर रहे हैं। इसीलिए कल आपको एक छोटी सी सौगात दी थी। कौन सी दी थी? एक था पिक्चर श्री लक्ष्मी नारायण का और दूसरी थी डायरी। तो ये तो सामने बाहर से देखने की चीज है, पर आप अपने मायके आए हैं तो माँ बाप हमेशा अपनी अच्छी बच्ची को, बच्चे को, साधारण हो या विशेष हो, जो अच्छे कुल के होते हैं, रॉयल थे, वो दहेज दिखा के नहीं देते थे। वो एक संदूक दे देते थे जिसमें हर प्रकार के हीरे हों, गहने हों, कितनी कितनी साड़ियां हैं, कितने सूट हैं, सास के लिए क्या दिया, नंद के लिए क्या दिया, कोई दिखावा नहीं, पेटी भर के दे दी और चाबी बेटी के हाथ में दे दी। तो आप भी यहाँ वो परमात्म शक्ति की पेटी भर के परमात्मा देने के लिए आए हैं और साथ में की भी आपको दे रहे हैं कि आप कौन हो, आप शिव की संतान हो, शिव शक्ति हो। शेर का बच्चा बकरी नहीं होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है। हम सर्वशक्तिवान की संतान है, विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान है, चाहे शरीर रूप में स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में है, ये तो ड्रेस है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण वास्तव में हर घर में नारी लक्ष्मी रूप में, पुरुष नारायण रूप में, अगर लक्ष्मी घर में आई तो नारायण होगा तभी तो लक्ष्मी आएगी, और ना लक्ष्मी जी होंगी तब नारायण मिलेगा। अभी अपने आप से पूछना चाहिए, बराबर हम वो लक्षणों की मूर्ति बने हैं, सिर्फ धन की मूर्ति नहीं, बाहर संपत्ति की बात नहीं, ज्ञान धन है, गुण धन है, समय धन है, स्वमान धन है, प्रभु का प्यार धन है, प्रभु की शक्ति और वरदान हमारा धन है। परंतु उससे सरस्वती लक्ष्मी बनने से पहले सरस्वती बनना होगा, क्योंकि नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट, और लाइट और माइट दोनों लेने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस, लाइट जगी अंधेरा भाग्य है। तो जब आत्मा के अंदर स्वाभाविक शक्ति जागृत होती है तो जो भय, कमजोरी, चिंता, ममता आदि, वो उसकी जो क्वालिटी है, वो चेंज जो है, वो जो गुण थे वो अवगुण में बदल जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं। तो तभी परमात्मा को फिर से वो स्मृति दिलानी पड़ती है। विस्मृति हो गई थी कि आप ही तो वो लक्ष्मी थी, आप सोचो आप ही तो नारायण थे, आपकी जड़ मूर्ति से लोगों को शक्ति मिलती है। जो जितनी देवियां प्रकट हुई उनका कभी बेबी का रूप देखा, किसी का जन्मदिन में किसी के उन कोई भी शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, जय मां लक्ष्मी सरस्वती ज्वाला, दुर्गे माता कल्याणी, नमामि कालिका चामुंडा साकुमरी मैया रुद्राणी, किसी के भी माँ बाप का स्थूल रूप देखा या किसी लक्ष्मी का बेबी रूप देखा, कहां से आ गई वो, प्रकट हो गई, या क्या हुआ वो अवतरित हो गई, वो शरीर सहित आकाश से उतर के आई, क्या एस्ट्रोनॉट तो नहीं थी जो गई और आ गई। वास्तव में यह आत्मिक परमात्म शक्ति परमात्मा देते हैं, आत्मा में आह्वान करने की आवश्यकता है, और आत्मा में भी आत्मा, तो आत्मा में भी वो माँ का स्वरूप जब आत्मिक स्थिति में आ जाता है तो नैनों में प्यार, दृष्टि में बहुत ऊंचा दृश्य, और मुख पर मधुर लोरी अथवा मेरी मीठा बेटा, मेरा मीठा राजा, मेरी प्यारी बिटिया, तो ऐसे मुख से बोल निकलते हैं। तब दृष्टि में प्यार है, वाणी में मधुरता है, और उसी मधुरता से और ऊंचे लक्ष्य से जब हम आत्माएं एक दूसरे को देखने लगती हैं तो हमारा स्वमान भी जागृत होता है, और जिसको वो रूहानी दृष्टि मिलती है और परमात्म प्यार मिलता है, रतन मिलते हैं, तो वृत्ति क्योंकि श्रेष्ठ है, भावना बड़ी श्रेष्ठ है, त्याग तपस्या समाया हुआ उसमें, तो जिनको वो दृष्टि मिलती है, वो मधुर बोल मिलते हैं, उनकी सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि और वृत्ति और मधुर वाणी सृष्टि को बदल देती है। इसीलिए आपने सुना कि बच्चे के संस्कार माँ बनती है पहले, और न केवल जन्म के बाद, हमारे शास्त्रों में भी और प्रैक्टिकल माताओं को भी अनुभव होगा कि जिस समय बच्चा हमने माँ के गर्भ में है तो माँ किस प्रकार का भोजन खा रही है, किस प्रकार के पुस्तकें पढ़ रही है, किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ये शिक्षा दी जाती थी कि अगर आपको वीर चाहिए, देशभक्त चाहिए तो क्या पढ़ो, प्रभु भक्त चाहिए तो क्या चाहिए, समाज सेवक बनना तो क्या चाहिए, साइंटिस्ट बनना है तो क्या। माँ उस समय बीज डालती है जन्म से पहले, तो परमपिता और किसमें बीज डालती है, शरीर में नहीं, आत्मा में। तो परमपिता परमात्मा ज्योत आके जगाते। आप ज्योतों वाली माताओं, सभी ज्योतों वाली माताओं, क्योंकि आप ज्योत स्वरूप हो। और ज्योत जब जगती है तो तीन चीजें प्रकट होती हैं एक साथ। और वो तीन चीजें क्या है? लाइट जगी, मोमबत्ती जगी। मोमबत्ती में लाइट तो थी, पर जब जगी तो लाइट प्रकट हो गई। और लाइट प्रकट होते ही उस पर उंगली रखो, क्या प्रकट दिखा हुआ, अनुभव हुआ? अग्नि, अग्नि प्रकट हो गई। और फिर देखा, हाँ ज्योत जग गई है, तो क्या दिखाई दिया? उसका स्वरूप दिखाई दिया। जगी तो तीनों प्रकट हो गई, बुझी तो तीनों खत्म हो गई। तो सशक्तिकरण के लिए मन की शुद्धि, मन के संकल्प की दृढ़ता, मन की पवित्रता, मनोभावना श्रेष्ठ, बिल्कुल रहम की भावना, क्षमा की भावना, क्षमा माई क्षमा करती है। तो ये मां मां शब्द तो बहुतों में अगर आप देखेंगे तो आता जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मा में, मन में शुद्ध संकल्प प्रेम की भावना है, और मन संकल्प शक्ति में दृढ़ और कल्याणकारी है। तो जो आत्मा की दृष्टि शक्ति के साथ बुद्धि की ज्योत जगती है, बुद्धि लाइट इज माइट, ज्ञान बुद्धि में भरता है, तो ज्ञान की लाइट है। और फिर उसका कर्तव्य क्या है? संस्कार, कर्तव्य, कर्तव्य संस्कार सिद्ध करते हैं, व्यवहार प्रैक्टिकल स्वरूप सिद्ध करता है, तो अंधकार को मिटा देती है। तो आप आत्मा यहाँ बाबा के घर से, परमात्मा के घर से आए हैं, ये गुप्त पेटी लेके जाना, साथ में लेके ही जाएंगे, मुझे पक्का ही है। और साथ साथ तो बाकी यहाँ का वातावरण, यहाँ का, क्योंकि जो माँ बाप की मिली हुई चीज होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है। और खास करके जो गुप्त मिलती है ना, उसका महत्व बहुत होता है। तो आप बाहर का वातावरण, भोजन, संग, क्लासेस, प्रोग्राम, वो अंदर इस पेटी में भर रहे हैं, इस बॉक्स में भर रहे हैं, बुद्धि के बॉक्स में। और मुझे 100% विश्वास है कि आपके पास वो रहेगा, क्योंकि अविनाशी पिता परमात्मा के घर में आप आए हैं। आप अविनाशी आत्माएं हैं, और परमात्मा जो दे रहे हैं ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, सत्यता का, विनाश नहीं होता है। उसका रूप गुम हो गया, वो फिर से वापस लाना है। इसीलिए ऐसा फिर से अपनी वो शक्ति भरने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसके लिए आपका हार्दिक वेलकम है, स्वागत है, और हृदय से स्वागत है। और इसीलिए मुझे आनंद है, खुशी है, प्रेम है कि हम सब मिलकर के वो इकट्ठा कर रहे हैं। एक अकेले नहीं, परमपिता परमात्मा ने शिव शक्तियों को तैयार किया, और 50,000 बहने जिन्होंने अपने जीवन को, कुमारी हो चाहे माता हो, फिर भी वो माँ स्वरूप है, परंतु भाइयों को साथ में रखा। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, नर नारायण, नारी लक्ष्मी। तो मन को बनाए मंदिर, घर को बनाए आश्रम, ताकि वो बच्चों को संस्कार मिले। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीवे, तो मतलब क्या है? संस्कार तो अलग होंगे, परंतु संस्कारों से टकराव ना हो। तो एक बात ध्यान रखनी है, कभी कंपैरिजन ना करें। ये नहीं कि हाँ ये तो फर्स्ट नंबर आया, पास भी डोनर हुआ, तो कितना कमजोर है, तेरे को तो थर्ड डिवीजन भी नहीं मिली, फेल हो गए। टाइम के हिसाब से मैं पूरा करती हूँ। मतलब कंपेयर करेंगे, एक की महिमा करेंगे, दूसरे को उठाने के लिए चाहे कंपेयर किया, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उन दोनों का आपस में। वो कहेगा माँ इसको ज्यादा प्यार करती है, मेरे को तो पसंद ही नहीं करती, बाहर से प्यार ढूंढेगा। घर में जो मिल रहा है उसमें सात्विकता है, घर से जो मिलता है उसमें शुद्धि है, घर से जो मिलता है वो प्यार है। तो आप अपने घर में आए हैं, परमात्मा से सब कुछ अधिकार के रूप में लेके जाए, प्यार का भंडार भर के भाए, ज्ञान गंगा बन करके जाए, शिव शक्ति बन करके जाए, हो ही सही परंतु उसको जागृत करके जाना है। ओम शांति।
आदरणीय सुदेश दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। दीदी ने बहुत सुंदर रीति से हमें समझाया कि माँ का स्वरूप कितना व्यापक है, हर एक शब्द जो भी महत्वपूर्ण है उसमें माँ कहीं ना कहीं है। तो कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और हाँ दीदी जी को अभी क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं आप, फिर भी आपने इतना अमूल्य समय हम सबके लिए निकाला, दीदी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच से आप आज्ञा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते, उसने माँ बनाई। तो माँ जैसी क्षमा दया करुणा ममता की मूर्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकती, माँ जितना निस्वार्थ प्रेम दुनिया में और कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसा स्वरूप हमें बनना है। तो माँ के लिए भी जैसे ईश्वर को भी हम याद करते हैं तो पहले हम माँ से पिता कहते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो माँ को पहले उसको माना गया, उस स्वरूप के उसके प्रेम स्वरूप को हम पहले याद करते हैं। और अभी मैं अपने महिला प्रभाग की अध्यक्षा हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, जिनसे आप कल भी परिचित हो चुके हैं, आपके ही निर्देशन में महिला विंग के सभी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप रशिया और उससे संबंधित लगभग 50 से भी अधिक सेवा केंद्रों की भी निदेशिका हैं, दिल्ली शक्तिनगर संबंधित सेवा केंद्रों की भी आप संचालिका हैं। आपने दिल्ली से ही ज्ञान लिया, लगभग 65 वर्षों से आप भी समर्पित रूप से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और सुदेश दीदी की तरह ही पूरे विश्व के पांचों महाद्वीपों में आपने अनेक देशों में यात्रा करके इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ जन जन तक पहुंचाया है। आपके लिए मैं कहूंगी, वाणी आपकी दीदी अंधियारे दूर कर देती है, मीठी मुस्कान आपकी जन्मों के दुख हर लेती है, सूर्य सा मुखमंडल की आभा ईश्वरीय वर देती है, पावन दृष्टि आपकी मन को शीतल कर देती है। तो आपका अध्यक्षीय प्रवचन हम सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दीप प्रज्वलन नहीं हुआ, हम दीप प्रज्वलन करेंगे, लेकिन हमारी जो मुख्य अतिथि हैं इस उद्घाटन सत्र की माननीय मंत्री जी, वो अभी ऑन द वे हैं और कुछ ही समय में वो हमारे बीच उपस्थित होंगे और उसके बाद फिर हम दीप प्रज्वलन करेंगे।
ओम शांति। आप थक तो नहीं गए सुनते सुनते? अगर थक गए हो तो 2 मिनट खड़े हो जाओ, कोई हर्च नहीं, खड़े हो जाओ थोड़ा, और थोड़ा पंजे के बल खड़े हो जाओ, पंजे के ऊपर सारा जोर डालो और खड़े हो जाओ, और थोड़े हाथ ऊंचे कर लीजिए, पंजे पर खड़े होके हाथ ऊंचे, अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब जरा अपना एक कंधा इधर से हिला के इस तरफ ले जाइए, बाईं तरफ, अब सीधा कर लीजिए, अब दाईं तरफ ले जाइए, सीधा कर लीजिए, अब पीछे ले जाइए, सीधा कर लीजिए, अभी जो चाहे वो कर लीजिए। बैठ जाओ। आप सबको मालूम है कि सभी को आजादी दी थी, जितना समय बोल रहे हैं बोलने दीजिए, इसलिए कि अपने चीफ गेस्ट आएंगे और ऐसा ना हो कि कार्यक्रम संपूर्ण हो जाए तब वो पहुंच पाए। वैसे तो कार्यक्रम शाम को भी है लेकिन इनॉग्रेशन के समय कैंडल लाइटिंग की जाती, कोशिश है कि वो आ जाएंगे तो कैंडल लाइटिंग हो जाएगी। और आप देख रहे हैं वर्षा है और रास्ते में माउंट आबू रोड से जब माउंट में आते हैं तो रास्ता ऐसा होता है कि इंसान को इंसान नहीं दिखाई देता, बहुत मिस्ट है। इसलिए यही कहा जाता है बड़ा धीरे धीरे आइए। और आपको भी मैं बार बार कह देती हूँ, जरा पांव जमाकर चलना। जमाकर चलने का मतलब जमीन को देख लेना, ठीक ठाक है ना जमीन भी। हमारे पिता श्री कहा करते थे कि अगर आप तेज तेज चलते हो तो धरती माँ को दर्द होती है, धरती माँ को तेज तेज पांव मार मार के चलने से उसे दर्द ना करो, लेकिन बड़े प्यार से पांव जमाकर चलो ताकि आपकी भी सेफ्टी धरती माँ की भी सेफ्टी। अभी आज विषय सबको मालूम है कि आज का विषय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण। और मैं अपने मंचासीन महान विद्वान और विदुषियों का और राजयोगिनी बहनों का स्वागत करती हुई आप सब विशेष आत्माओं का, महान आत्माओं का हृदय से स्वागत करती हुई अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत नहीं पूरा विश्व मिलाएं तो लगभग 50% महिलाएं हैं और भारतवर्ष में बहुत से लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा गया। ऐसा कहेंगे कि जैसे कोई अधरंग का पेशेंट हो तो सही रूप से चल नहीं पाएगा क्योंकि आधा साइड उसका चलता है आधा साइड नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार हमारी सोसाइटी का भी यही हाल हुआ कि 50% हमारा समाज एक्टिव रहा और 50% समाज एक्टिव नहीं रहा। महिलाओं को कुछ इस प्रकार के अधिकार नहीं थे जो सचमुच वो शिक्षा अच्छे रूप से ग्रहण कर सके और अपना जीवन सुरक्षित और शिक्षित रूप से चला सके। माँ बाप उस समय यही कहा करते थे, बच्चे को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, उसे गीता भागवत पढ़ लेनी चाहिए, कुछ पाठ सीख लेना चाहिए, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, प्रवृत्ति संभालनी है, यही सब कुछ उसे आ जाए तो काफी है। लेकिन आज हम देखते हैं समय ने बहुत सुंदर मोड़ लिया है, आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जहां महिलाओं ने अपनी विशेषताओं की छाप न छोड़ी। लेकिन बात आज हम करने जा रहे हैं आध्यात्मिक सशक्तिकरण की। मैं उस समय की बात बताऊंगी अपने संस्कृति प्राणी भूल चुका था। तो परमात्मा ने क्या कहा, नारी जागेगी जग जागेगा। नारी जागो, नींद को त्यागो और सोए हुओं को जगाओ। ये उस समय की बातें हैं, सन 3637 की, जिस समय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक, जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा ने इस विद्यालय की स्थापना की, उन्होंने उस समय एक आवाज लगाई, हे मानव, भारत के वो मानव, अपनी प्राचीन संस्कृति को पहचानो, जागो महलो जागो, सोए हुओं को जगाओ। आपकी वो संस्कृति थी जिस संस्कृति के लिए गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो नारी जिसकी पूजा होती थी, पूजा धन की नहीं होती थी, पूजा सौंदर्य की नहीं होती थी, पूजा गुणों की होती थी, पूजा पवित्रता की होती थी, पूजा जीवन की शेष धारणाओं की होती थी। लेकिन जब जगत में धीरे धीरे गिरावट का छोर शुरू हुआ, तो देखने में आया कि वो जो जीवन की पूज्य गुण थे, धारणाएं थी, श्रेष्ठताएं थी, किस कदर वो समाप्त सी होती जा रही। कल मैं जब नीचे शांति वन से माउंट आबू की तरफ आ रही थी, दो तीन झरने बह रहे थे और झरनों को देखने वाले युवा और युवतियां ज्यादा वही दिखाई दिए। सभी बड़ी मस्ती में मस्त थे, फोटो खींची जा रही थी, वे दृश्य देखे नहीं जा सकते थे, जिस कदर वो महिलाएं और वो छोटे युवा आयु के पुरुष युवतियों से खेल कर रहे थे। कहां गई वो संस्कृति, कहां गया वो भारत का नाज और भारत की शान। तब सन 3637 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने एक आवाज लगाई, जागो, कब तक श्रृंगार करके पिंजरे की मैना बनी रहोगी, देखो तो सही, ये संसार की हालत बिगड़ रही है, क्या इस बिगड़ते हुए संसार को थामने के लिए, इसे सुधारने के लिए आप अपने जीवन में कुछ तप और त्याग नहीं कर सकते, उठो जागो, अब अपने आप को पिंजरे की मैना नहीं बना के रखो। ठीक है, पौधे बहुत लगे हुए हैं, चार पौधे और लगा दिए, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन लगे हुए पौधों में कुछ ऐसी झाड़ियां, कुछ ऐसे पौधे निकल आए हैं जो उन पौधों की शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं और उन पौधों को पनपने और बढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं मिल रही है। आज ऐसी झाड़ियां और इस प्रकार के पौधे जो पनपने के लिए रुकावट बने हुए हैं, उनको उखेड़ दो और सुंदर गुलशन इस दुनिया का बना दो, ये संसार रहने योग्य बन जाए। जागो और जगाओ। मैं आपको संदेश देना चाहूंगी, उस समय सन 3637 की बात है, जिन माता और बहनों ने इस आवाज को सुना, उन्होंने इस आवाज को सुन करके अपनी गहरी निद्रा से जाग उठी। त्यागो इस घूंघट को, छोड़ो इस शर्म को, सारे विश्व को बेशर्म होने से बचा दो। वो देवी संस्कृति जो इस भारत में थी, पुनः उस देवी संस्कृति को लाओ। तुम देवी बनो और देवी जन्म देगी तो देवी और देवता कहलाएंगे। तुम वो मां बन के दिखाओ जिन कन्याओं, माताओं और भाइयों ने इस आवाज को सुना और हृदय में लगाया, उन्होंने अपने जीवन में एक त्याग और तप का जीवन बनाने के लिए इस फैलते हुए विश्व रूपी विकारों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को सेवा पर तत्पर कर दिया और जन जन के जीवन को सुधारने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वरीय शिक्षा का आधार लिया। वो समय था सिंध हैदराबाद में जब इस विद्यालय की स्थापना हुई। महिलाएं जब बाहर निकलती थी तो सारा सिर ढककर केवल एक आंख खाली रखती थी, बाकी मुंह सारा ढका हुआ होता था। अगर किसी का पति श्री छोड़ देता तो साल भर उसे सुबह से लेके रात तक रोना है और तेल से सने हुए कपड़े पहनकर ही उसे रहना है। इस प्रकार का जीवन था। ईश्वर ने कहा अब इन सब कुरीतियों से स्वयं को उठाओ। दुर्गुण है विकृतियां और विकार, जब तक इन विकारों से आपने निवृत्ति नहीं प्राप्त की तब तक दुख और अशांति ठीक नहीं हो सकती। आज भी मैं देखती हूं फला महिला को फला पुरुष ने ये किया, फला ने मिलकर के फला का बलात्कार किया, क्या उन्हें जेल में रख देने से, सजा देने से, फांसी देने से क्या ये सुधार हो सकता है? अगर मानव की दृष्टि और वृत्ति का सुधार करना है और ये सुधार आध्यात्मिकता के बिना, ये सुधार नहीं हो सकता। और आध्यात्मिकता क्या बताती है कि पुरुष और स्त्री का भेद केवल शरीर से है। शरीर तो एक वो मिट्टी है, लेकिन शरीर रूपी मिट्टी के घर में निवास करने वाली वो चैतन्य शक्ति है जो पुरुष और स्त्री में भिन्न नहीं है। भिन्नता तो केवल बाहरी चोले की। ईश्वर ने पुकार की जागो, पहचानो, सबको आत्म दृष्टि से देखो, सब मेरी रचना है। कुछ के मन में विचार आया क्या हम एक दो चार बदल जाएंगे तो क्या हमारे थोड़े से बदलने से संसार बदल जाएगा? ईश्वर ने हम बच्चों को आदेश दिया, ऐसा क्यों समझते? ये कमजोरी के ख्यालात क्यों आते हैं? अगर एक दीपक जगता है और सारे घर में दीपावली हो जाती है, दीपक से दीप जग जाता है, एक बीज बोया जाता है, सुंदर वृक्ष निकलता है और प्रति वर्ष फल खाते हो, आनंद लेते हो, एक क्राइस्ट आए, एक बुद्ध आए, आज लाखों से ज्यादा क्रिश्चियन और बौद्धिस्ट है, ये सब कहां से आए? एक से ही तो आए। आप कभी ये ना समझो हम अकेले के सुधरने से क्या होगा। आज हम किसी से अपनी वैल्यू डलवाते हैं, मैं कैसी लगती हूं, मैं क्या लगता हूं। परमात्मा कहते किसी से वैल्यू ना डलवाओ, तो बहुत वैल्यूएबल है, तेरे में वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां तेरी सुषुप्त है। आप सोचिए एक माँ अपने बच्चे को किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए दूर भेजती है तो उसको थोड़ा बहुत सामान दे देती है, बेटा हो सकता है तेरा हॉस्टल या रहने का बेस कहीं दूर हो, मार्केट दूर हो तेरे घर से, तो तेरे पास कुछ सामान ऐसा होना चाहिए ताकि तुझे कष्ट का सामना ना करना पड़े। ऐसे समय पर तू अपने अंदर रखे हुए सामान से अपना सही गुजारा कर सके और मार्केट को जान लेने पर फिर मार्केट से वो सामान खरीद सकेगा। एक माँ भी अपने बच्चे का ये ध्यान रखती है। आप सोचिए, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के माता पिता हैं, जब उन्होंने हमको इस कर्म क्षेत्र, इस मनुष्य सृष्टि पर भेजा, तो क्या हमको खाली हाथ भेज दिया होगा, जाओ अपनी तकदीर आजमाओ? नहीं, उन्होंने हमको इतना कुछ दिया कि अगर इस संसार में जहां मैं भेज रहा हूं वहां तुझे सब कुछ मिलेगा, कोई चीज की तुझे कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा समय आ जाए जब तुझे वो उपलब्धियां उपलब्ध ना हो सके, तो मैंने तुझे सभी उपलब्धियां उपलब्ध करा के भेज रहा हूं, उस समय उन उपलब्धियों का प्रयोग करना और अपने को कमजोर या किसी चीज की कमी महसूस ना करना। समय सच्चों का था, सुख और शांति का जीवन जीते थे, शेर बकरी एक हाट पानी पीते थे, हीरे जवाहरात के महलों और मकान थे, एक धर्म एक भाषा एक राज्य, आपस में सुख और शांति का जीवन था, ऐसा हमारा सुखद संसार था। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी वास्तविकता को भुलाना शुरू कर दिया। ये देह जो कि हमारा केवल मात्र वस्त्र है, चोला है, जब कोई श्री छोड़ता है उस समय हम फौरन कहते हैं, आपने सुना है, उन्होंने चोला तज दिया है। उन्होंने मीन्स किसने वो चोला धारण किया था और किसने चोला तज दिया? वो चैतन्य आत्मा जो परमात्मा की संतान, उसने ये शरीर रूपी चोला लिया है और वो शरीर रूपी चोले को तजती है और वो आत्मा अन्य स्थान पर पुनः जन्म लेती है। तभी मरने वाले के लिए शब्द दिया गया है, वो चल बसे हैं, जहां से चलते वहां मृत्यु है, जहां बसते वहां जन्म है। ये चलने और बसने वाला खेल इस संसार में चलता रहा और देह में रहने वाली आत्मा धीरे धीरे अपने देह के अभिमान में आती चली। मैं देह हूं, मैं कौन हूं, ये अपने असली स्वरूप को भूल गए। आज भी हम और आप सभी यहां बैठे हैं, अपने से पूछिए कितना समय हमको याद रहता है, ये देह तो नाशवान चोला है, ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख नहीं हूं, ये मेरे कान हैं, मैं कान नहीं हूं, ये मैं इनका इस्तेमाल करने वाली चैतन्य अविनाशी शक्ति, और शक्ति के लिए गायन है। शक्ति को ना किसी ने क्रिएट किया है, ना शक्ति का संहारी हो सकता है, शक्ति तो अविनाशी चीज, हम अविनाशी आत्माएं हैं, एक ज्योति हैं, एक दिव्य प्रकाश है। तभी चोला तजने पर बोलने में ये शब्द आता है, लाइट हैज गॉन, ज्योति चली गई, प्राण पखेरु हो गए। हम अपने आप से पूछें कितना समय हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और कितना समय हम स्वयं को शरीर समझते हैं। और जब हमने शरीर समझना शुरू किया तो तेरे और मेरे के भाव भेद आने शुरू हुए, गोरा और काला, अमीर और गरीब, तू और मैं, हिंदू और मुस्लिम, ये सब भावनाएं पैदा होनी शुरू हो गई। और इन भावनाओं के कारण हम जो सुख और शांति का जीवन जी रहे थे, धीरे धीरे तेरी मेरी ईर्ष्या नफरत द्वेष क्रोध लोभ अहंकार, इन विकृत विकृतियों के अधीन होकर हम अपनी सत्यता को विस्मृत होते चले और धीरे धीरे वो शांति, वो सुख, वो आनंद जो आत्मा की धरोहर थी, खजाना था जो आत्मा साथ लेकर आई हुई थी, जब आज वो समय आया, पहले नेचर सब कुछ देती थी, उन सब चीजों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आज धीरे धीरे मनुष्य नेचर का गुलाम बन गया, अधीन बन गया, दुखी और परेशान हो गया, अब परमात्मा कहते हैं हे आत्मो, तेरे पास शांति है, तेरे पास प्रेम है, ज्ञान है, शक्ति है, तो चंद क्षण के लिए अपने देह से मन को हटा करके तू अपने सत्य स्वरूप में मन को स्थिर कर। तू अविनाशी शक्ति है, तू अनश्वर सत्ता है, तू अनश्वर सर्वशक्तिवान मुझ परमात्मा की संतान है। अगर तुझे सच्ची शांति की आवश्यकता है तो वो शांति किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलेगी, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर में नहीं मिलेगी। आप ये कहो यहां हमको मिलेगी, यहां भी वातावरण के अनुसार शांति है, लेकिन सच्ची शांति का अनुभव तब होगा जब आप अपने निज के शांत स्वरूप स्मृति में स्थित हो। मैं चेतन शक्ति, मैं शांत हूं। ओरिजिनली जो हमारी नेचर है, जैसे कहते हैं पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। परमात्मा शांति का सागर है, हम उसके बच्चे शांत स्वरूप हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, हम उसके बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं। परमात्मा प्रेम का सागर है, हम बच्चे प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को विस्मृत हो गए क्योंकि हमारा पिता परमात्मा से कनेक्शन कट हो गया। कहते भी हैं मनुष्य रचना वही रचता है जैसा वो स्वयं को समझता है। आज हमने जब स्वयं को देह समझा और हमने अपना इष्ट भी देहधारी ही समझा, चाहे देह श्री राम जी की है या श्री कृष्ण जी की है, हनुमान जी की है या गणेश जी की है, शरीर तो पांच तत्वों का ही बना हुआ है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो पांच तत्वों से न्यारे हैं, ये तत्व जिससे कोई चीज बनती है, ये तत्व आखिर विनाश को प्राप्त होते हैं। हाँ, तत्वों की बनी चीज विनाश को प्राप्त होती है, तत्व कभी नाश नहीं होते, तत्व पुनः तत्वों में मिल जाते। प्रकृति अविनाशी, हमको जब याद होता है हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, हमारे अंदर से भय खत्म होता है और शक्ति का संचार होता है। आज हम अकेले विश्व के कोने कोने में भी जाते हैं, कई बार हमसे कई पूछते हैं आप अकेले इंग्लैंड में, अमेरिका में अकेले गए, तो मुझे आश्चर्य आता है अकेले क्या है, क्यों नहीं अकेले जा सकते हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा में सब शक्तियां हैं, भरपूर हैं। हाँ, अगर शरीर काम नहीं करके संग के लिए, उसकी रक्षा के लिए या उसकी सहायता के लिए अगर कोई संग लेते हैं तो अलग चीज, लेकिन भय से हम किसी को लेते हैं, अकेले जा रहे हैं, आप शक्ति स्वरूपा बनकर जाइए, आप हैं कौन। आज एक पत्थर की प्रतिमा जहां स्थापित होती है वो स्थल मंदिर कहलाता है, प्रतिमा तो हमारी क्रिएशन है, हम तो क्रिएटर हैं। क्यों हम अपने आप को भूल जाते हैं? तो परमात्मा पिता ने आकर के हमें सशक्त बनाया, हमें ये समझ दी कि नाशवान चोला और नश्वर चोले के अंदर अनश्वर शक्ति आत्मा, आत्मा मेरी संतान है। अगर तेरा मेरे से कनेक्शन बना रहेगा, हर समय मेरी शक्ति तुझे महसूस होती रहेगी, तो कभी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेगा। मैं विश्व के उन देशों में भी गई जहां मेरी भाषा नहीं है, जहां का लोगों का कल्चर कुछ अपने प्रकार का है, उनकी वेशभूषा अपने प्रकार की है, तो क्या हुआ? आत्मा तो वो भी है ना, मेरे पिता के बच्चे तो वो भी हैं। हम एक घर से साकार पुनः सृष्टि पर आए हैं, पुनः एक घर में जाना है। यहाँ हमने भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न संस्कृति और भिन्न भिन्न आपस में रिश्ते बना करके दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन हम तो एक के थे, एक के हैं और एक के रहेंगे। हमें कभी नहीं ऐसा प्रतीत होता कि ये कोई अलग लोग हैं, हम कोई अलग। 2 साल पूर्व हमारे यहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ, लगभग 62 देशों के लोग आए हुए थे और हर देश के अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, लेकिन मिलकर एक ही टेबल पर बैठ के खाते, इकट्ठे बैठते, इकट्ठे घूमते, लेकिन लगता ये हमारा एक परिवार है। ये सब शिक्षा किसने दी? उस परमात्मा पिता ने कहा कि मेरा जगत अब बहुत लंबे काल तक चलने वाला नहीं है, अब इस संसार को तुमने बदलना है, इसलिए तुम स्वयं बदलो और दूसरों को बदल करके उनके जीवन को भी दिव्यता और श्रेष्ठता मिला। आज ये शक्ति सेना जो परमपिता परमात्मा ने तैयार की है, उस शक्ति सेना को यही आदेश है, बदलो और अन्य को बदल के दिखाओ। आज लगभग 104 देशों में अपने सेवा केंद्र हैं और सभी सेवा केंद्रों पर इंडियन बहने नहीं है। इंडियन बहने केवल मात्र उस ईश्वर का पैगाम देने और इस विश्व को कैसे परिवर्तित किया जाएगा उसकी नॉलेज देने के लिए अवश्य गई या उन्हें बुलाया गया, लेकिन जब उन्होंने इन बातों को समझ लिया तो उस स्थान के सेवा केंद्र की रेख देख करने के लिए उनको नियुक्त किया गया। आज मेरा ज्यादातर जाना रूस देश में होता है और रूस देश एक ऐसा देश रहा जहां कम्युनिज्म था, जहां धर्म को लगभग 70 वर्षों से बैन किया गया था और अफीम का नाम देकर के धर्म को पुकारा जाता था। अगर किसी ने धर्म को माना तो मानो वो अफीमची है, अफीमची अफीम खा करके उसके नशे में सोया रहता है। ऐसा कोई धर्म को मानने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। मैं उस समय वहां पहुंची जब गर्बच्चो वहां के प्रेसिडेंट थे और कम्युनिज्म था। उस समय मंदिरों में ताले थे, चर्चिस में ताले थे, मस्जिद में ताले थे और यहां तक कि उसकी दीवारों को भी छील छील कर, कुरेद कुरेद कर वहां के चित्रों को समाप्त किया गया था, ताकि किसी को धर्म का चिन्ह भी देखने में नहीं आए। और अगर कोई धर्म का नाम लेता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको जेल में रखा जाता था। हमसे पूर्व हरे कृष्णा हरे रामा वाले पहुंचे थे, 7 वर्ष तक वो भी जेल में रहे। हम जब वहां गई तो हमको पता चला कि यहां कम्युनिज्म इस प्रकार का है, लेकिन उस समय पेरेस्ट्रोइका के द्वारा लोगों को कुछ धर्म की स्वतंत्रता मिल गई थी जो मुझे नहीं मालूम था। आज हमारे रूस उस समय सोवियत लैंड था, सारा रशिया एक था, सोवियत लैंड कहलाता था, और हमारे वहां देखते ही देखते धीरे धीरे वो बंटना शुरू हुआ और अनेक देशों में बंटवारा हो गया और कम्युनिज्म सोशलिज्म में चेंज हो गया। उस समय की दुनिया कुछ और दुनिया थी, आज कुछ और है। 35 वर्ष आज पूरे हुए और आज लगभग हमारे 75 सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र उन देशों में हैं। केवल भारतवर्ष से 2 बहनें वहां गई और 1 भाई थे, बाकी जितने भी सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र हैं वहां की ही बहनें हैं और वहां के ही भाई बहने उन सेवा केंद्रों को सुचारू रूप से चलाते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में देखा जाए तो जब कोई अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो मर्यादा छोड़ने पर
भी हम जरा ताली बजा के आपका स्वागत करेंगे। मैं अपनी बात को पूरा करके फिर कार्य शुरू करेंगे आगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस समय इस भारत की नारी मर्यादा में चलती थी, ये भारत देवभूमि था। लेकिन कहाँ गई आज वो मर्यादाएं, कहाँ गई वो देव संस्कृति। आज परमात्मा पिता का यही ऐलान है, मेरे बच्चे जन जन को दैवी गुणों से परिचित कराकर इस संसार के नक्शे को बदलो। जब आपने अपने संस्कृति को बदला तो आपका मान और शान समाप्त हुआ। अगर कोई नदी, गंगा नदी बाढ़ का रूप ले ले और बाढ़ आपके घर में आ जाए तो आप जय गंगा मैया कहकर पैसा नहीं चढ़ाओगे, यही चाहोगे कि प्रभु इस गंगा मैया को ले जाओ ताकि बाढ़ हमारा नुकसान न कर दे। ठीक इसी प्रकार जब अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया, अपनी वास्तविकता छोड़ दी, तो क्या हालत हुई। आज परमात्मा पिता ऐलान करते हैं कि आपने बहुत उन्नति की है, लेकिन आज जरूरत है इस उन्नति की कि अपने जीवन में दैवी गुणों को, दिव्यता को लाओ। छोटा बच्चा भी है तो देखने में तन से वो छोटा है, लेकिन ना जाने वो आत्मा कितने जन्म लेकर आपके घर में आज छोटा बच्चा बन के आया है। बचपन से बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए ताकि ये श्रेष्ठ संस्कारों की दुनिया फिर से संस्कारित हो सके। और आज इस विद्यालय के जितने भी सेवा केंद्र जिस भी कंट्री में चलते, चाहे अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, कोई भी देश है, सब देशों के विद्यार्थियों से कभी आप मिलकर पूछिए उनके जीवन में आज क्या क्रोध का अंश भी है, उनका आचार और विचार कितने पवित्र हैं, उनका आहार। जब मैं रूस देश में गई, वहां मीट, मछली, अंडा और पानी की जगह शराब, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज लगभग 3,500 रेगुलर विद्यार्थी हैं और मैं एक धड़ल्ले से कह सकती हूँ, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कभी सिगरेट का सेवन करता हो और कभी मीट पीत खाता हो और शराब पीता हो। क्या आज वो लोग जिनकी संस्कृति भिन्न थी, वो अपनी संस्कृति में दिव्यता और श्रेष्ठता ला सकते हैं, अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। भारत तो भूमि ही धर्म की भूमि है, ऐसी भूमि पर रहने वाले क्यों नहीं अपने जीवन को बदल सकते। मैं ऐसा आश्वासन देना चाहूंगी कि परमात्मा की केवल मात्र एक आज्ञा है, हे बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा से संबंध जोड़ो, तो जिस शक्ति की आपको कमी होगी मैं वो शक्ति से आपको भरपूर करूंगा। और जो दिव्य जीवन, दिव्य संस्कृति आपकी थी, वह पुनः संस्कृति जागृत होगी और यही भारत जो देवभूमि था पुनः देवभूमि बनेगा और सारा विश्व देवभूमि ही कहलाएगा। ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। और जिन पलों का हमें इंतजार था, बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे, हमारी माननीय मंत्री जी कृष्णा गौर जी, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट चेयरपर्सन, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर बैकग्राउंड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस एमपी गवर्नमेंट से हैं। पहले हम इस उद्घाटन सत्र का विधिवत उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलित करके। तो मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथियों का मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप समूह खाकर के दीप प्रज्वलन करें, और जो भी हमारे अन्य सभी सेशंस के भी वक्ता हैं उनके लिए नीचे कैंडल लाइटिंग स्टैंड रखा जा रहा है, तो दोनों तरफ आप कैंडल लाइटिंग आकर के करेंगे। जितने भी सेशंस के वक्ता हैं, आप सभी को अपना मालूम है, आप इनवाइटेड हैं। और उसके अलावा श्रीमती अर्चना जैन जी, जो मेंबर नीति आयोग हैं, रितु शर्मा जी राष्ट्रीय सेविका समिति से हैं और सुभद्रा बहन मदनपल्ली से, आप भी नीचे कैंडल लाइटिंग में सहयोग देंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में।
और अभी उद्घाटन उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ माननीय मंत्री जी को, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, जो 2023 से राज्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन में आपका स्वतंत्र प्रभार है और विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से आप संबंध रखते हैं। आप 2018 में पहली बार गोविंदपुरा से और वर्ष 2023 में दूसरी बार भोपाल विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुई। महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी हैं, रायसेन जिले की प्रभारी, यादव समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा की प्रदेश मंत्री हैं। आप छात्र जीवन में भी कॉलेज सचिव रही, कोषाध्यक्ष, लायंस क्लब सेंचुरी रही और वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य और 2005 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष रही। 2009 में नगर पालिका निगम भोपाल की महापौर एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की फिर आप अध्यक्ष रहे। तो आपके लिए मैं कहूंगी, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जीवन तो सभी जी लेते हैं यहाँ, पर तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आपने अपने जीवन को ऐसा ही अनेकों के लिए मिसाल बनाया है जिससे प्रेरणा मिलती है। तो मैं अनुरोध कर रही हूँ माननीय मंत्री जी को आकर के अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। आज के इस गरिमामय समारोह में मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड से हमारे बीच पधारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीप्ति रावत भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित आचार्य उपेंद्र जी, हमारी स्पेशल गेस्ट देश की सबसे युवा सांसद बहन श्रीमती संजना जाटव जी, राजयोगिनी बी के शीला बहन, राजयोगिनी बी के चंद्राधिकारी दीदी, चेयरपर्सन विमिंग विंग ब्रह्म कुमारी, राजयोगिनी बी के सविता दीदी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और आज इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय बंधुओं, बहुत स्नेही बहनों, आज मन अपार हर्ष से भरा हुआ है ये कहते हुए कि आध्यात्मिकता के अविरल प्रवाह की इस पावन धरा पर मुझे अपने परिवार के साथ आप सबके मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस राजयोग शिविर और राष्ट्रीय सम्मेलन के सुअवसर पर मेरी उपस्थिति निश्चित रूप से मैं आप सबके मध्य बहुमूल्य मानती हूं। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि ईश्वरीय वरदानों एवं तपस्विनी राजयोगिनी दादियों के अलौकिक स्नेह से सिंचित ये संस्थान आज देश और दुनिया में अपने आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है और हम ये मानते हैं कि वास्तव में यही एक सुदृढ़ भारत की संरचना है। मेरे साथ साथ देश के हर एक नागरिक को गर्व है ये कहते हुए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी स्थापना अविभाजित भारत के समय सन 1936 में सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुई थी, आज विश्व के लगभग 140 देशों में लगभग 8000 शाखाएं सेवा केंद्र के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। और इससे भी ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि विश्व भर में संचालित हो रही एक एक शाखा, एक एक सेवा केंद्र का उद्देश्य मात्र प्रत्येक मनुष्य में आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास करना और उन्हें सहज योग और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाना है। और इसीलिए इस संस्थान में मुझे जो जानकारी मिली कि लगभग 21 प्रभाग काम कर रहे हैं, जिसमें से एक महिला प्रभाग भी है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना है। आज महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय राजयोग शिविर और राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण जैसे विषय पर मुझे आप सबके मध्य अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान मिला है और मैं मानती हूं कि वास्तव में ये विषय मात्र संवाद का विषय नहीं है, यह हमारे समाज के नव निर्माण का मूल मंत्र है। यह एक सांस्कृतिक एवं आत्मिक जागरण का आह्वान है। आज के इस युग में जब नारी हरेक भूमिका को सजग और सक्रिय रूप से निभा रही है तो उसके सामने सामाजिक, मानसिक, आत्मिक अनेक प्रकार की चुनौतियां भी है और उन चुनौतियों का सामना वो सिर्फ बाह्य सशक्तिकरण से नहीं कर सकती, इसके लिए उसे आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वरीय संबल कदम कदम पर चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण नारी शक्ति की मूल आत्मा है। एक नारी जब स्वयं को देह से बढ़कर आत्मा समझती है तो उसके अंदर एक अपराजेय ऊर्जा का उदय होता है और यही वह राजयोग है जिसकी शिक्षा ब्रह्म कुमारी संस्थान विगत कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से देता चला आ रहा है। मुझे आज गर्व है यह कहते हुए कि ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें सिर्फ सादगी और साधना की प्रतिमूर्ति ही नहीं कहलाती बल्कि वे समाज की मार्गदर्शक भी कहलाती हैं। ये बहनें हमें सिखाती है कि एक नारी को सशक्त होने के लिए शोर की नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता है, उसे शांति चाहिए और ये शांति तब हमें मिल सकती है जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। निसंदेह आज हम सब 21वीं सदी के इस दौर में जी रहे हैं, और मेरे साथ आप सब भी इस बात से सहमत होंगी कि 21वीं सदी के इस दौर में महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। आज हम ये कहते हैं कि आज की महिला अबला नहीं है, वो रथ के पहिए में हाथ लगाकर वरुण रावण संग्राम की दिशा बदल देने वाली कैकेयी है, वो भरत की गुरुवाणी स्वाभिमानी शकुंतला है, वो पंडितों की भरी सभा में पांडित्य को चुनौती देने वाली भारती है, वो सुरक्षा का पर्याय बन जाने वाली किरण बेदी है, तो वो अपने ही जीवन काल में किंवदंती बन जाने वाली लता मंगेशकर भी है। आज महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रहा हो। अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसने महिलाओं की सफलता ना दिखाई देती हो। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है, और निश्चित रूप से एक वातावरण पूरे चारों तरफ इस प्रकार का बना है कि आज की महिला सशक्त है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बाह्य सशक्तिकरण जो हम सबको दिखाई देता है, ये वास्तविक सशक्तिकरण नहीं है। वास्तविक सशक्तिकरण उसकी आंतरिक शक्ति है जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होती है, और इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को कभी अबला नहीं कहा। हमारे देश की संस्कृति तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति रही है। हमारे देश की संस्कृति में तो महिलाओं को अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी है। हमारे देश की संस्कृति तो हमेशा से नारी को शक्ति का स्वरूप मानती चली आई है। क्यों? क्योंकि गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में नारी को पूजने वाला ये समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ईश्वर ने महिलाओं को अपार क्षमता प्रदान की है, अपार शक्ति प्रदान की है, निर्माण करने की, परवरिश करने की, परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता अगर किसी में है तो इस धरा पर नारी शक्ति के अंदर है। और इसीलिए नारी के अंदर अपार शक्ति होने के कारण उसे मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। महिलाएं हैं वो जो इतना काम एक साथ कर सकती हैं, वरना इतनी शक्ति किसी और में दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आज इस तेज रफ्तार दौड़ती हुई दुनिया में, इस भागम भाग की जिंदगी में हमारी महिलाओं की शक्ति कहीं ना कहीं बिखरती चली जा रही है। मानसिक तनाव, पारिवारिक उलझने, सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं की आंतरिक ऊर्जा को लगातार क्षीण कर रही है, कमजोर कर रही है, और ऐसे समय में अब विचार यही आता है कि तो अब क्या करें, अब कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर निकले। क्या हम इस तेजी से दौड़ती हुई दुनिया के साथ कदम ताल मिलाना छोड़ दें? अगर ऐसा हम करते हैं तो इस भागती हुई तेजी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में कहीं हम पिछड़ ना जाएं? तो क्या हम इस तेज रफ्तार होती हुई जिंदगी के साथ हम कदम ताल ना मिलाएं या मिलाएं? और अगर हम मिलाते हैं तो ये डर मन में कि कहीं हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्य पीछे ना छूट जाएं, हम उनसे ना कट जाएं, तो क्या करें? हम ऐसे समय में प्रश्न यही खड़ा होता है कि हमारी जीवन शैली संतुलित बनाकर हम कैसे आगे बढ़ाएं कि हम इस तेजी से दौड़ती हुई दुनिया के साथ भी हम कदम ताल मिला सके और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्यों को भी हम साथ में लेकर सहज कर आगे बढ़ने का काम करें। और इसके लिए आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों में हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक नारी है जो आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकती है, अगर वो दृढ़ निश्चय इस बात का कर ले। और इसलिए हम मानते हैं कि आध्यात्मिकता का ऐसे समय में महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और ऐसे समय में जब ये प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो सबके लिए एक ही जवाब होता है, एक ही समाधान होता है कि आध्यात्मिकता की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें सिखाती है कि मैं मात्र एक शरीर नहीं हूँ बल्कि एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा भी हूँ। क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें सिखाती है कि हमारे अंदर शक्ति का स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है, जो परम शांति और प्रेम का अथाह सागर है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें यह सिखाती है कि राजयोग और सहज योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, और एक नया आत्मविश्वास नई ऊर्जा के साथ, नई स्पष्टता के साथ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नारी जब अपने परिवार और समाज को संभालती है तो वो परिवर्तन भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नारी किस प्रकार से अपने परिवार और समाज को संभालती है, इस परिवर्तन को भी समझना, क्योंकि कई बार वो परिवर्तन इतना बारीक होता है कि हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो समझना भी बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता से परिपूर्ण नारी अपने परिवार को संभालती है। और इसके लिए हम मानते हैं कि परिवार की पहली पाठशाला अगर कोई होती है तो वह माँ की गोद होती है, और एक नारी जब आध्यात्मिकता से सशक्त होती है तो वो अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर के लिए ही नहीं, वो अच्छे संस्कार के लिए प्रयास करती है। जब आध्यात्मिकता से भरपूर नारी होती है तो वो अपने पति का सिर्फ साथ ही नहीं देती बल्कि उसे धैर्य और दृष्टि भी देती है। एक आध्यात्मिकता से भरी हुई नारी जब होती है तो वो बुजुर्गों की सिर्फ सेवा ही नहीं करती बल्कि वो उन्हें आदर और सम्मान का अनुभव भी कराती है। और एक आध्यात्मिकता से भरी हुई नारी जब परिवार की अपनी चारों घर की चारों दीवारों को संस्कृति, संस्कार, परंपरा और मूल्य से ऊंचा करती है तो सिर्फ ऊंचा ही नहीं करती, उसे ऊर्जा का केंद्र भी बनाती है। पारिवारिक आध्यात्मिकता से भरपूर नारी परिवार को कैसे संभालती है यह हमको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। और यही नारी जब समाज, जब परिवार की चार दीवारी से, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज के कल्याण के लिए आती है तो वो राजनीति में सेवा का भाव लेकर आती है, वो शिक्षा में मूल्य आधारित नेतृत्व लाती है, वो स्वास्थ्य में सहानुभूति और करुणा लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आध्यात्मिकता से सशक्त नारी परिवार में, समाज में विभाजन नहीं बल्कि समन्वय सिखाती है, जोड़ना सिखाती है, सबको साथ रखना सिखाती है। और यह परिवर्तन अगर किसी से आता है तो निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक शक्ति से आता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से आता है। और मुझे आज गर्व है यह कहते हुए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान इस दिशा में लगातार काम कर रहा है, ईमानदार प्रयास कर रहा है। इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण हमारे सामने देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो स्वयं न केवल आध्यात्मिक साधना से जुड़ी हैं बल्कि वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की मूल्यों की प्रेरणा से भी जुड़ी हुई हैं। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी सम्माननीय बहनों को, बंधुओं को, सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए जा रहे इस अलौकिक प्रयास के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत नमन करती हूँ। और कहना चाहूंगी कि वास्तव में यह एक ऐसा संस्थान है जो महिलाओं के, नारियों के अंदर शक्ति नहीं देता है बल्कि उनके अंदर जो देवीय शक्ति ईश्वर ने प्रदत्त की है, जो ईश्वरीय शक्ति उनके अंदर है, उस शक्ति का जागरण कराता है, उस शक्ति का स्मरण कराता है जिसके माध्यम से वो परिवार और समाज को नई दिशा दे सकती है। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर घर घर में ज्ञान की ज्योत जलाएं, ज्ञान की बाती जलाएं, हर बहन को राजयोग से जोड़ें और इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना अपना योगदान देने का प्रयास करें। आप सबको, पूरे ब्रह्म कुमारी संस्थान परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई। और मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का। बहुत सुंदर विचारों के रूप में आपने अपनी प्रेरणाएं हम सबके समक्ष रखी कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है और आध्यात्मिकता से ही कितने गुण हमारे जीवन में स्वतः आने लगते हैं। तो बहुत विस्तार से आपने हमें इस विषय से अवगत कराया और अभी हम सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। शाम को 5 बजे यहाँ ही हार्मनी हॉल में आपका पैनल सत्र है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये प्रश्न उत्तर का सत्र रहेगा। इसमें आप भी अपने विचार दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो सभी समय पर यहाँ उपस्थित रहेंगे। और फिर रात्रि 9 बजे पैनल सेशन के पश्चात आप 9:15 तक यहाँ हॉल में आने का प्रयास करें। आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, तो आप सभी अभी हम यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व 2 मिनट प्रभु स्मृति में अपने मन को स्थित करेंगे और फिर आप भोजन पर जाएंगे। हालांकि देरी हो चुकी है लेकिन फिर भी हमारे मंत्री जी 1 मिनट और बैठेंगे। हमारे जो भी आज के अतिथि हैं उनका हम शॉल और जो अपना यहाँ का गिफ्ट है उनसे सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी को आदरणीय चक्रधारी दीदी जी शॉल पहनाएंगे। और आपका तो तहे दिल से धन्यवाद है, आप 8 बजे अहमदाबाद पहुंचे और सीधा ड्राइव करके आप यहाँ माउंट आबू आए हैं। ऐसी यात्रा करके सीधा हमारे बीच आकर के आपने अपना वक्तव्य दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य उपेंद्र जी को शॉल पहनाकर दीदी सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती संजना जाटव जी जो सांसद हैं, आपका भी शॉल पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। दीप्ति जी आप सभी कतल ध्वनि से अपना सहयोग देंगे। अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं।
त्याग तपस्या की तो मूरत, त्याग तपस्या की